कभी कभार कुछ चीजें खुदावंद की मर्जी से होती हैं। हाल ही में हम डेनवर गए थे और वहां से वापस आ गए। मैं ईमान रखता हूं और चाहता हूं कि उस इबादत के मुतालिक अतला दूं। ये उन बेहतरीन इबादत में से एक थी जो मैंने बरसों में की है। हमारा शानदार वक्त गुजरा। बस 2000 से ज्यादा ने अपने दिल मसीह को दे दिए। इसके अलावा उन्होंने रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा हासिल किया। हमारे प्यारे खुदावंद यीशु ने डेनवर में उन लोगों के दरमियान अजीम निशानों और मौजजात के साथ काम किया। हमारे पास एक जबरदस्त बहाव था और लोगों की एक बड़ी भीड़ थी। हमने इब्तदाई तौर पर तकरीबन 5000 लोगों के साथ आगाज किया था। बस हमारी इबादत मेमत गार्डन्स में थी और तीसरी रात तो इतनी भी गुंजाइश ना थी कि किसी जगह कोई खड़ा ही हो सकता। 5 रातों में हमने बहुत ही शानदार वक्त गुजारा। बस मैं और मेरा बेटा कनाडा जाने के लिए वहाँ से रवाना हुए और अभी हम पहाड़ों के दरमियान में से गुजर ही रहे थे कि बर्फानी तूफान आ गया। मेरा ख्याल है आपने इसके मुतालिक रेडियो पर सुना होगा और इस तूफान की वजह से तकरीबन 188 लोग मारे गए थे और हम बर्फ के बहाव की वजह से कई दिनों तक उन्ही पहाड़ों में फंसे रहे। बेशतर इससे कि हम दोबारा वहाँ जाते, हमारी इबादत गुजर चुकी थी। फिर हम वहाँ से वापस घर आ गए। देखें, हम ईमान रखते हैं ये सब कुछ खुदा की मर्जी से हुआ था ताकि यहाँ एक अच्छी इबादत हो सके और वगैरह वगैरह। उसने हमारे लिए कोई मंसूबा बनाया हुआ था जिससे हम वाकिफ नहीं हैं। हम एक तारीख किस्म की दुनिया में से गुजर रहे हैं लेकिन हम तारीकी में नहीं है। जिस सिमत में नूर जाता है हम सिर्फ नूर की पैरवी करते हैं। और हमारे आसमानी बाप के पास कोई ऐसी बात थी जिसके मुतालिक हम नहीं जानते हैं। हो सकता है वहाँ कोई खतरा मुंडला रहा हो या दोबारा वो किसी को लाने के लिए काम कर रहा हो। आप गौर करें, खुदा सिर्फ एक शख्स के लिए भी ऐसा काम कर सकता है। वो पूरी कौम को सिर्फ एक शख्स के लिए बदल देता है ताकि उनमें दाखिल हो जाए। और हम जानते हैं कि ये सब कुछ खुदा की शान के लिए था और हम इस बात के लिए और अपनी हिफाजत के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और बहुत सारे थे हम, बिली और मैंने उस हादसे से शिकार होने वाले लोगों की और जिन चीजों की वजह से सड़क बंद थी उन्हें उठाने में उनकी मदद की। हम एक बार सड़क से उतर गए थे लेकिन ये सिर्फ चंद लम्हों के लिए हुआ था। बस हम बगैर किसी परेशानी के वापिस आ गए और वहाँ एक रेंच में से एक आदमी नीचे आया और हमें ट्रैक्टर से बाहर निकाला, बस खींच लिया क्योंकि वहाँ बहुत फिसलन थी और ये उन चीजों में से एक थी जो उनके पास नहीं थी। ऐसा नहीं हो सकता, पुराने जमाने वालों ने इस तरह का तूफान कभी नहीं देखा होगा। राउंड अप मोंटेना में साल के इस वक्त ये होता है और हम थे, हम जानते हैं इस तरह की खतरनाक सूरत हाल में हमारे खुदावंत का हाथ कहीं ना कहीं था। ये वहाँ किसी मकसद के लिए और हमारी भलाई के लिए था, हमारी भलाई के लिए ये वहाँ हुआ था। और बस वापिस आने के बाद मैंने भाई नेविल को फोन किया और मैंने कहा मैं इस इतवार घर पर रहूंगा और अगर आपकी मर्जी हो तो मेरे लिए ऐसा करें और अगर मुमकिन हो तो संडे स्कूल लें, क्या ये ठीक है? और मैंने कहा फिर मुझे और मुझे ऐसा करके बहुत खुशी होगी। उसने कहा यकीनन ठीक है बाइबिल, कहा हम हमेशा आपके आने पर बहुत खुश होते हैं और बड़े खुले दिल के साथ आपको यहाँ खुश आमदीद कहते हैं। बस कल का पैगाम उनके रेडियो प्रोग्राम पर नशर हुआ था। हम इन सब चीजों के लिए शुक्रगुजार हैं। और आज सुबह अब मदर्स डे है और ज्यादातर लोग हर जगह मदर डे के खुतबात सुनेंगे और लोग माँ के बारे में बातचीत करेंगे जो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है। बाकी इबादत के लिए इसे छोड़ दें। आज सुबह मैंने ऐलान किया था कि मैं रियासत हाय मुतहद्दा पर हमले के मौजू पर बातचीत करना चाहता हूं, जिसे आपने शायद अपने रेडियो की नशरियात में सुना होगा और आज आप में से काफी इसे सुनेंगे और इबादत में शायद आज रात मदर्स डे का पैगाम भी हो। और मैंने सोचा था कि आज सुबह मैं एक हमले पर बात करूंगा। मैंने डेनवर में इस पर बात की थी लेकिन इस नुक्ता नजर से बिल्कुल नहीं की थी। जिस तरह अगर खुदा ने चाहा तो मैं आज सुबह यहाँ करने वाला हूँ और इस तरह बहुत अच्छा वक्त गुजरा था। खुदावन ने शानदार तरीके से बरकत दी थी और ऐसा हमें कभी कभार ही कभी कभी आपको समझाने के लिए थोड़ा सा हिलाना पड़ता है ताकि आपको एहसास हो कि ये सब क्या है। क्या हमें नहीं हिलाना पड़ता? और हम दुआ करते हैं कि खुदा ये करे। और देखें, जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, देखें डेनवर के बिजनेसमैन लोगों ने इबादत को स्पॉन्सर किया था और ये थोड़ा सा मुख्तलिफ स्पॉन्सर था जो मुझे पहले कभी किया गया था। और आमतौर पर आप खुदाम इस बात से वाकिफ हैं कि जब वो इबादत को स्पॉन्सर करते हैं तो आप कहते हैं, क्या आपने इसका ऐलान किया था? जी हाँ, चर्च में किया था। और ये सिर्फ इस बारे में होता है, वो चरवाहे हैं, वो चाहते हैं कि उनके रेवड़ इसके मुतालिक जाने। ये एक अच्छी बात है क्योंकि ये उनका कारोबार है। लेकिन वो बिजनेसमैन थोड़े मुख्तलिफ थे, वो चाहते थे कि दुनिया इस बारे में जाने, इसलिए उन्होंने तकरीबन $3,000-$4,000 मालियत की इश्तहारबाजी तमाम स्ट्रीट कारों पर, टैक्सियों पर और कारों के तमाम बम्पर्स पर और वगैरह वगैरह पर की। हमारा वहाँ शानदार वक्त गुजरा था। इबादत खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे एक तरफ बुलाया, कहा, भाई ब्रहनम, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपका कैसे कर्ज अदा करें? मैंने कहा, क्यों, यकीनन कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा, मेरा आप पर कोई कर्ज नहीं है। मैंने कहा, अगर आप चाहते हैं तो मेरे होटल का बिल अदा कर दें। ओ, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, और वो नहीं कर सके। मैंने उनसे कुछ नहीं लिया और मैनेजर ने उन्हें अपने पास बुलाया और उसने कहा, मुझे यकीन है कि वो किसी किस्म का शिकार या मछली पकड़ना पसंद करता है, क्या वो नहीं करता? उसने कहा, जी हाँ। चुनाचे उन बिजनेसमैन लोगों में से एक का वहाँ एक रेंच था और उसने कहा, मैं उसके लिए इसे बतौरे एक तोहफा पेश करूंगा। ठीक है, मिस्टर मोर उसे देखने के लिए गए। उसे तकरीबन 35 मील पीछे घोड़े पर जाना पड़ा। मैंने कहा, मिस्टर मोर ने कहा, मैं सिस्टर ब्रैनम को घोड़े पर बैठकर वापस जाते हुए देखना पसंद करूंगा। बस वो और, लेकिन इसके बाद देखें, वो वहाँ से सिल्वर प्लॉन कोलोराडो में एक घरेलू जगह पर चले गए। अब ये इस तरफ होना चाहिए और उन्होंने वहाँ पर एक छोटा सा खेत खरीदा और अब वहाँ मेरे लिए 5 कमरों का घर बना दिया है। ये सिल्वर प्लॉन कोलोराडो में है जो कि पहाड़ों के एन दरमियान में है, लिहाजा आप माहीगीरों के लिए, मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा वक्त और आराम करने के लिए एक अच्छी जगह होगी। इबादत और बाकी चीजों के बाद अगर खुदा ने चाहा तो ये उस पर मुनसर है, आप जानते हैं। अब मैं आपकी तवज्जो कलाम की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ और मैं सिर्फ कलाम से, खुदा के जिंदा कलाम से मोहब्बत करता हूँ, ये बात है। और कलाम के अंदर जिंदगी है। अब लफ्ज हरूफ मार डालते हैं लेकिन रूह जिंदगी बख्शती है और जिंदगी कलाम में है क्योंकि ये खुदा का कलाम है, जिंदगी उसके कलाम में है। जैसे अगर मैं आपसे कहता, मैं आपको देता हूँ, आप कहते, भाई ब्रहनम, आज सुबह मैं भूखा हूँ, क्या आप मुझे $5 देंगे? मैं कहता, मैं दूंगा। अब इसमें उतनी ही जिंदगी है जितनी मेरे वादे में है। इसी तरह खुदा की तरफ से भी है। जब खुदा किसी चीज का वादा करता है तो जो खुदा कहता है वो अपने कलाम का पाबंद है, समझे? इस कलाम की कोई कीमत नहीं है, ये कलाम बिल्कुल खुदा जैसा है, ये खुदा है। आपका कलाम वही है जो आप हैं, आप उसके साथ जुड़े हैं। हम अक्सर कहते हैं, आपका कलाम आपके साथ जुड़ा है। अगर हम आपकी बात नहीं मानते हैं तो फिर मैं भरोसा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं किसी काम के लिए आपकी बात मान लेता हूँ तो ये आदमी की इज्जत है। और बाइबल कहती है, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। देखें, और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। अगर हम सोचें तो ये जमीन जिस पर आज हम रह रहे हैं खुदा का कलाम है, वो दरख्त खुदा का कलाम है और आपका जिस्म खुदा का कलाम है। खुदा ने फरमाया और इस तरह ये वजूद में आ गया, इसे उस चीज से बनाया गया जिसमें कुछ भी नहीं था। क्या आपने कभी इंसानी जिंदगी पर गौर किया है कि ये कहाँ से आई है? एक छोटे से खुलिए से, इतना छोटा कि इंसानी आंख उसे देख नहीं सकती, सिर्फ एक बड़े ताकतवर शीशे के जरिए देख सकती है। और वहाँ से 150 या 200 पाउंड का आदमी निकला है, ये कहाँ से आया है? गौर करें, खुदा ने सिर्फ फरमाया और उसी से इसकी शुरुआत हुई। फितरत के लिहाज से बढ़ता रहता है और बस इस तरह इसे तख्लीक किया गया था। उसने कलाम किया और हर दरख्त हर चीज वजूद में आ गई। और आज सुबह खुदा के कलाम को देखना कितनी जबरदस्त बात है, ये एक शानदार चीज है। अब आज सुबह पुराने ऐदनामे में से तवारीख की जानिब बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा परेशान रहा हूँ, लेकिन आप इस वक्त तवारीख 18वें बाब को निकाल लें। बस थोड़ा सा थका हुआ हूँ, लेकिन अगर खुदावन की मर्जी हुई, मुझे मालूम नहीं, हम बुध की रात को मजीद सीखेंगे। अगर खुदावन ने चाहा और कलीसिया ने महसूस किया कि उसकी रहनुमाई की जाए, तो मैं बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता और इतवार को पसंद करूंगा और यहाँ की बेदारी के लिए सिर्फ कलाम में से बेदारी पर सिखाना चाहूंगा। बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता और इतवार को सिर्फ कलाम पर सिखाना चाहूंगा। शिफाया इबादत नहीं बल्कि तालीमी इबादत होंगी। हो सकता है खुदावंद हमारी उस राह पर रहनुमाई करे और फिर हम मैं सिर्फ आपके साथ रहना और आपके साथ कलाम के चौगिर्द रफाकत करना पसंद करता हूँ। इस उम्दा और शानदार आमीन के लिए मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। अब तवारीख के 18वें बाब और 12वीं आयत से शुरू करते हुए हम अपने ख्यालात की बुनियाद रखना चाहते हैं आज के इस अहम मौजू पर थोड़ी देर के लिए। पहला तवारीख बल्कि दूसरा तवारीख है, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, दूसरा तवारीख 18:12 है और हम यहाँ इसका एक हिस्सा पढ़ेंगे और देखेंगे कि खुदावन क्या चाहता है कि हम जाने। और उस कासिद ने जो मिकाया को बुलाने गया था उससे ये कहा, देख सब अम्बिया एक जुबान होकर बादशाह को खुशखबरी दे रही है, सो तेरी बात भी जरा उनकी बात की तरह हो और तू खुशखबरी ही देना। मिकाया ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम, जो कुछ मेरा खुदा फरमाएगा मैं वही कहूँगा। जब वो बादशाह के पास पहुँचा तो बादशाह ने उससे कहा, मिकाया हम रामात जलाद को जंग के लिए जाएं या मैं बाज रहूं? उसने कहा, तुम चढ़ाई करो और कामयाबी हासिल करो और वो तुम्हारे हाथ में कर दिए जाएंगे। अब चंद लम्हों के लिए अपनी सोच की बुनियाद रखने के लिए उसके लिए फिर से ये एक लफ्ज है। हमारे आसमानी बाप, शुक्रगुजार दिलों के साथ हम अब तुझसे राब्ता कर रहे हैं, खोई हुई रूहों की तरफ से और चर्च की तरफ से और उन लोगों की तरफ से जो जरूरतमंद है, और हम दुआ करते हैं रूहुल कुदस अब जल्दी से कलाम में आ जाए और कलाम को सीधा हर उस दिल तक ले जाए जिसे इसकी जरूरत है, और वो अपने कलाम की ताकत का पैगाम हर दिल तक पहुंचा दे ताकि आज सुबह हम सब इसके जरिए खुशहाल हो जाएं और टैबरनेकल से रुखसत होते हुए खुशी से और खुदा की हम्द करते हुए ये कहते हुए जाएं। उसकी हजूरी की वजह से हमारे दिल जोश से भर गए हैं और हम ये उसके नाम से मांगते हैं, आमीन। आज सुबह हमारे मंजरनामे की बुनियाद एक सानहे पर है और पुराना ऐदनामा मेरे लिए हमेशा एक साया या एक नए ऐदनामे की पेशन गोई रहा है। कई बार कहा गया है, भाई ब्रहनम क्यों आप हमेशा पुराने ऐदनामे को लेते हैं? तकरीबन हमेशा एक मतन लेकर आप पुराने ऐदनामे में वापस चले जाते हैं। मैं ये करता हूँ क्योंकि मुझे तशबियात पसंद है, मुझे ये पसंद है। मेरी तालीम बहुत महदूद है जैसा कि सब जानते हैं, और सिर्फ एक ही तरीका है जिसके बारे में मैं जानता हूँ कि मैं ठीक जगह पर हूँ, और देखता हूँ कि पैटर्न क्या था, खाका खींचता हूँ और देखता हूँ ये क्या था, और फिर मैं जान जाता हूँ जो कुछ यहाँ है उससे मिलता जुलता होगा क्योंकि ये सिर्फ उसका साया है। और मैं हमेशा पुराने ऐदनामे की तरफ मुड़कर देखता हूँ कि बनी इसराइल ने क्या किया था, ताकि देखूं गुनाह की सजा क्या थी, और देखूं अंबिया का इंसाफ क्या था, और देखूं कि वो सब बातें क्या थी, और देखें फिर इससे मुझे अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ क्या है और जो पेशनगोई हो चुकी है उसका इख्तिताम आम तौर पर कैसे होगा। इस वक्त के दौरान इसराइल के साथ एक बहुत बड़ा वाकया पेश आया था, वो आधी रात के अंधेरे में था। अगर खुदावन ने चाहा तो आने वाली इबादत में पुराने ऐदनामे में से मैं ये दिखाना चाहूँगा कि पुराने ऐदनामे में 7 कलीसियाई जमानों की तस्वीर मौजूद है। वो बिल्कुल इसी तरह शुरू हुए जैसे कलीसियाई जमानों के आगाज में गैर अकवाम की कलीसिया थी, और बिल्कुल इसी तरह के मिलते जुलते तारीख दौर में से गुजरे और पेंतिकोस्त के शानदार वक्त में निकल आए। जैसे इब्तदाई कलीसिया रूहुल कुद्दस के नज़ूल के वक्त निकल आई थी यहूदी निजाम में से, फिर गैर अकवाम की कलीसिया एक और दौर से गुजरती है और तारीकी के दौर से निकलती है, और फिर आखिर में हजार साल बादशाही के लिए दोबारा निकल आती है। अब वहाँ दरमियानी सदियों में ये अजीम बादशाह अखियब इक्तदार में आ गया और वो एक तरह से दूसरे इसराइली बादशाहों की साख पर सवार था, जो कि एक अखियब खुद एक किस्म का डावाडोल ईमानदार था। मैंने अक्सर उसका इस तरह हवाला दिया है क्योंकि उस वक्त का कुछ हिस्सा बाढ़ की इस तरफ था और वक्त का कुछ हिस्सा बाढ़ की उस तरफ था। आप कभी जान नहीं पाएंगे कि एक नापायदार इंसान के साथ कहाँ खड़ा होना है, या एक इंसान जो मसीही होने का दावा करता है लेकिन पायदार नहीं है, आपको नहीं मालूम उस इंसान के साथ क्या करना है। ऐसे लोग आज मसीही हैं और कल क्या होंगे आप नहीं जानते हैं। आज गिरजाघर में वो खुशी मना रहे हैं और गा रहे हैं और खुदा की तारीफ कर रहे हैं, और कल बाहर निकलकर पीते हैं, मस्ती करते हैं और इधर उधर भागते हैं। फिर इस किस्म के आदमी के साथ काम करना मुश्किल है। मुझे याद है लड़कपन में एक बार हमारे पास एक बूढ़ा घोड़ा था, वो हर वक्त बाड़ों को फलांगता रहता था, और मेरा ख्याल है आप में से बहुत सारे लोग जो मेरी उम्र के हैं बग्गी और घोड़ों के दिनों के बारे में जानते होंगे। मैं खुद कई बार यहाँ इस गली में घोड़ा और बग्गी चलाकर आया हूँ। मैं 45 का हूँ, तो वो मुझे याद है इस बूढ़े घोड़े को हमने इसकी गर्दन पर जुआ डाल दिया था, जिस तरह आप गाय को बाढ़ कूदने से बाज रखते हैं, और फिर भी वो छलांग लगा देगा और वो इस जुए को घुमाकर उतार देगा और इसी तरह जारी रखेगा, वो बाढ़ को अबूर कर लेगा। और एक दिन उसने किया। मैं हैरान था कि इस बूढ़े घोड़े को कौन सी चीज अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही है, और वहाँ नीचे एक बड़ा गड़ा था। अब वो एक ऊंची जगह पर एक खास किस्म की घास में खड़ा हुआ था, ओ लेकिन वो चाहता था, और वहाँ उस गड़े में बगीचे की घास के कुछ पत्ते थे। उसने बाढ़ से छलांग लगाई और तारों और शीशे से भरे हुए गड़े में जा गिरा। वहाँ हम थे और अपने कबाड़ खाने में थे, और उस बाग की घास के चंद लुकमे लेने के लिए वहाँ जा पड़ा, और हमें कुछ और घोड़े लेने थे और उसे उस गड़े से बाहर निकालना था। जब वो वहाँ गया तो वो फंस गया था, और जब उसे बाहर निकाला तो वो वहाँ खड़ा हुआ कांप रहा था और खून बह रहा था, और वो इस हालत में था सिर्फ बाग की घास के एक या दो लुकमों के लिए ऐसा हुआ, जबकि वो दूसरी घास में खड़ा हुआ था जो तकरीबन उसके घुटनों तक थी। मैं अक्सर इस तस्वीर के बारे में सोचता हूँ। खताकार के रास्ते में मुश्किल है, जहाँ वो खा रहा था और बहुत अच्छा वक्त गुजार रहा था वहाँ वो कायम ना रहा, लेकिन उसने बाढ़ से छलांग लगा दी और जाकर जख्मी हो गया और हर तरफ से कट गया सिर्फ मुख्तलिफ किस्म की घास के एक लुकमे के लिए। अब इसी तरीके से लोग करते हैं और खुदा की चरागाह की बाढ़ से छलांग लगा देते हैं। क्या आप इस पर ईमान नहीं रखते? आज बाहर निकल जाते हैं फिर अंदर आ जाते हैं, आज चर्च में लुत्फंदोज होते हैं और कल किसी चीज के लिए खुद को बेच देते हैं। ये चीज मुश्किल पैदा कर देती है। अखियब कमोबेश इस किस्म का शख्स था। हर तरफ से हवा चल रही थी। अखियब ने अपना बैरी जहाज तैयार कर लिया था, चाहे वो इस तरफ हो या उस तरफ हो। उसकी शादी ने उसे उलझा दिया था और एक छोटी शहजादी एक बादशाह की बेटी एजबल के साथ बांध दिया था। देखने में बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत औरत थी, लेकिन वो दिल की बदकार थी और वो एक बुत प्रस्त थी, और वो सारे इसराइल का सबब बन गई। अब मैं यहाँ सिर्फ चंद मिनटों के लिए रुकना चाहता हूँ, जैसे पहले होता था, और माँ बनने की हकीकत को समझते हैं। इधर देखें, और जब कोई आदमी शादी करने लगता है तो देखे वो किस किस्म की लड़की या खतून है, क्योंकि ये देखना खूबसूरती से बढ़कर है। आप किसी को इसलिए हासिल करते हैं ताकि जान और जिस्म दोनों इकट्ठे मिल जाए। कोई ऐसा शख्स हो जो वाकई आपका दोस्त हो और थपकी देने वाला हो, जो दुख और सुख में आपके साथ चिपका रहे। लेकिन देखें, अखियब उस पर फरिश्ता हो गया था क्योंकि वो खूबसूरत थी, और मुझे लगता है उसने शादी कर ली थी, और इस बारे में और कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि वो बदकार थी, और वो वहाँ आ गई, और फिर यकीनन वो उसके साथ इस तरह लिपट गया और उससे प्यार किया। देखें, वो तमाम इसराइल के गुनाह और खुदा की मुखालफत का सबब बना और खुदा की कुर्बान गाहों को गिरा दिया और बाल की कुर्बान गाहों को बना दिया, और वो उस वक्त पूरे इसराइल में बाल की इबादत करने लग गए। अब उसकी बीवी रास्तबाज नबूत के सबब से, आप में से बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में पढ़ा है, किस तरह उसने उसके खेत को धोखे से छीन लिया था, झूठी कसम खाई थी और उसके खिलाफ झूठे गवाह खड़े किए थे, क्योंकि वो अपने शोहर के लिए कुछ करना चाहती थी, और एक रास्तबाज आदमी को मार डाला ताकि वो खेत हासिल किया जाए जो महल की जमीन के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ था। खुदा नीचे इस मामले को देख रहा था। चुनाचे एलिया नबी, जो कि खुदावंद का एक अजीम ताकतवर खादम था, उसने पेशनगोई की और एजबल को बताया कि उसके साथ क्या होगा, और उसने अखियब से कहा कि कुत्ते तेरा खून चाटेंगे। देखें, जब खुदा कुछ कह देता है, यकीनन उन दिनों में खुदावंद का कलाम नबी के जरिए बराए रास्त आया था। अगले जमाने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बा हिस्सा और तरह बा तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाने के आखिर में अपने बेटे यीशु मसीह की मार्फत कलाम किया। लिहाजा ये कलाम है, और अगर कोई चीज इसके खिलाफ है तो उसे तनहा छोड़ दो, समझे। बस अब सानवी तौर पर वो आज एक नबी या गैबीन या किसी और के जरिए बोलता है, लेकिन सबसे पहले ये कलाम है। अब और अखियब ने ये शरारत की थी और वो बढ़ता गया, तो भी खुदा लोगों को कई सालों तक बरकत देता रहा, और आखिरकार यहोशफत यहूदा का बादशाह बन गया, जबकि अखियब इसराइल का बादशाह था। और फिर यहोशफत एक रास्तबाज आदमी था, वो आसा का बेटा था। आसा एक रास्तबाज आदमी था, और उसने बुतों की तमाम कुर्बान गाहों को डा दिया था और यहोवा की कुर्बान गाहों को बनाया था, और उनके यहाँ यहूदा में एक बेदारी चल रही थी। और फिर कुछ अरसे बाद यूं हुआ, यहोशफत बल्कि अखियब ने एक पैगाम भेजा, क्योंकि उसे सूर्या में जमीन का एक टुकड़ा मिल गया था जो उसके ख्याल में उसका था, और उसने सोचा कि उसे हासिल किया जाए। तो उसने यहोशफत से पूछा कि क्या वो आकर उसके साथ इत्तेहाद करेगा, और बेशक अब ये एक बहुत बड़ा खतरा है। देखें, उन्होंने उस अजीम बादशाह अखियब को वहाँ नीचे देखा, और उस अजीम यहोशफत को ऊपर देखा। उनमें से एक नीम गरम, दूसरा रूह से भरा हुआ आदमी था। देखें कि आप अपना इत्तेहाद कैसे बनाते हैं, देखें कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को गैर ईमानदारों के साथ कैसे जोड़ते हैं। अपने आप को पाक रखें, खास तौर पर इस दिन में जिसमें हम जी रहे हैं। बगैर किसी शक के साए के मुझे यकीन है, और कलीसिया, मेरा दिल जोश से भरा है। यही वजह है कि मैं उन 5 रातों का बेताबी से इंतजार कर रहा हूँ, इससे पहले कि ऐसा हो, एक बार फिर इस कलीसिया की बाइबल के जरिए मुकम्मल तौर पर कांट छांट की जाएगी। हम वक्त के साए में जी रहे हैं, ये किसी भी वक्त हो सकता है। हम देखते हैं कि चीजों के जहूर का वक्त आ गया है, दुश्मन की बढ़ती हुई बदी और बढ़ती हुई कुव्वत का वक्त आ गया है। हम इन बर्फानी तूफानों को और तमाम वबाई अमराज को और तमाम मुख्तलिफ चीजों को आते हुए देख रहे हैं, और ये सब कुछ मुदाखलत और बाकी चीजों और बमों को चलाने की वजह से होता है। वो यहाँ सब चीजों को मिक्स कर रहे हैं, और वो खुदा की बड़ी लेबोरेटरी में गड़बड़ कर रहे हैं ताकि उसका कलाम पूरा हो। ये होने वाला है, इसलिए गुनाह का आदमी बहुत ज्यादा ताकत और मकारी के साथ उठ रहा है। मेरे खुदाया, मैंने आज सुबह एक खादम को, रूह से मामूर आदमी को सुना, भगवान के निशान पर बात करते हुए कहा कि मुखालफ मसीह रूस है, ये गलती है। रूस का इससे कोई तल्लुक नहीं है। नहीं जनाब, ये कलाम के मुताबिक है। अब इस अजीम जमाने को देखें जिसमें हम जी रहे हैं, ये एक वार्निंग है। अब यहोशफत एक तरह से अच्छा महसूस कर रहा था, क्योंकि इसराइल के अजीम बादशाह ने कहा था, आओ मुझसे मिलो, और वो वहाँ आ गया, और उन्होंने बैल और बेड़े और वगैरह वगैरह की कुर्बानी दी। अखियब के दिल में हर वक्त कुछ रहता था, वो एक धोखेबाज था, क्योंकि वो उस तरह इबादत नहीं कर रहा था, वरना वो उन बेड़ों और बैलों को सच्चे दिल से पेश करता, क्योंकि इसके बावजूद भी उसने अपनी बीवी के मजहब की तरफ ज्यादा झुकाव रखा। और गौर करें, जिस तरह अखियब ने एजबल से इसराइल के उस बड़े तारीख दौर में शादी कर ली थी, और वो इसराइल में बुत प्रस्ती ले आया था, जो कि आज की एक मिसाल है। सिर्फ तारीख दौर में, जब हम इब्तदाई रसूलों के जरिए बाहर निकलते हैं, दूसरे दौर, तीसरे दौर, यहाँ तक कि तारीख दौर में 1500 साल लग गए। जिस तरह अखियब ने एजबल से शादी करके इसराइल में बुत प्रस्ती को फरोग दिया, उसी तरह होली गोस्ट चर्च ने نظاموں سے شادی کر لی اور بت پرستی کو فروغ دیا اور آج وہ مسیحت کی شکل میں موجود ہے. سمجھے؟ غور کریں، بہت زیادہ اندھیرا ہے اور اب یہ ہر روز نیچے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. ہر چرچ کا زمانہ اسی طرح نیچے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. نیم گرمی کی حالت بہت زیادہ عروج پر ہے. نیم گرم لودیکیا کا کلیسیائی زمانہ ہے. او یہ کتنی خوفناک گھڑی ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. سنیں پیشتر، اس سے کہ میں آگے بڑھوں، میں یہاں اعتراف کرنا چاہتا ہوں، میں ایک پرانی طرز کا مناد ہوں اور پرانے دنوں کو دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے اس کی بہت زیادہ نقل دیکھی ہے. ہالی ووڈ نے انجیل کو اپنے انداز میں ڈال لیا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے بہت زیادہ تنگ اور پریشان ہو گیا ہوں. جی ہاں جناب، میں پرانی طرز دیکھنا چاہتا ہوں. مجھے ڈر ہے کیونکہ ہم مسیحت کو لوگوں کے لیے بہت خوبصورت بنا رہے ہیں. یہ ایک خطرے کی لکیر ہے. اب یہوشوت نیچے آتا ہے اور سوچتا ہے، او ٹھیک ہے، اسرائیل کا یہ عظیم بادشاہ ہے، بس یہ میں کروں گا. او ہم کریں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور اس ساری بڑی دل فریبی کے درمیان اس نے کیا کیا؟ اس نے وہاں جانے اور دشمن سے لڑنے کے لیے مشترکہ بنیادوں پر اتحاد کر لیا، کیونکہ انہوں نے کہا ہم دونوں کے لوگ ایک جیسے ہیں. لیکن وہ ایک نہیں تھے، ایک روس سے بھرا ہوا گروہ تھا، دوسرا نیم گرم گروہ تھا. وہ ایک جیسے لوگ نہیں ہیں. نہیں جناب، آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں. اندھیرے کی روشنی کے ساتھ رفاقت نہیں ہو سکتی ہے. سورج کی روشنی میں رات کا وجود نہیں ہو سکتا ہے. تمام اوقات کے درمیان یہ سب سے زیادہ ناقابل اعتبار وقت ہوتا ہے. بس جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے یا طلوع ہو رہا ہوتا ہے، یہ وقت سب سے زیادہ ناقابل اعتبار وقت ہوتا ہے. واضح طور پر دیکھنے کے لیے کافی روشنی نہیں ہوتی ہے. آپ کی گاڑی کی لائٹس بھی اچھا اور صاف نہیں دکھاتی ہیں. بہتر ہے یا تو اندھیرا ہو یا روشنی ہو. یسو نے کہا گرم ہو یا ٹھنڈا ہو، نیم گرم نہ ہو، بس یہ خطرے کی لکیر ہے. اور پھر یہ حسوت وہ نیچے آ گیا اور پھر یہ عظیم اتحاد ہو گیا، لیکن خدا اس سے خوش نہیں تھا. اور غور کریں، اب اس وقت میں صرف ان میں جوش و خروش تھا. مجھے اس بادشاہ کے ساتھ ملاقات کا اعزاز حاصل ہوا ہے، اور ہو میری اس پڑوسی کے ساتھ رفاقت ہے. میرے پاس دیکھیں، اس چرچ سے خبردار رہیں. سمجھے؟ یہی وجہ ہے کہ اس ٹیبرنیکل کے چوگرد اور دیگر کے چوگرد یہ چیز تمام پریشانیوں کا سبب بنتی ہے. سمجھے؟ آپ جس چیز میں گل مل رہے ہیں اس کے بارے میں محتاط رہیں. سمجھے؟ فوراً باہر آئیں، یا تو مسیح کے ہو جائیں یا اس کے خلاف ہو جائیں. سمجھے؟ اب اس ساتھی نے اتحاد کر لیا اور اس نے سوچا اس نے بہت اچھا کام کیا ہے. بہرحال اس نے کہا، اس سے پہلے کہ ہم چڑھائی کریں، کیا ہمیں اس بارے میں خداوند سے مشورہ کرنا نہیں چاہیے؟ اب یہوشوت کے غلطی کرنے کے باوجود اس کے اندر اتنا دین موجود تھا، اور وہ بادشاہ کے پاس گیا، لیکن اس کے اندر اتنا دین موجود تھا کہ وہ اس پر سوچے، ٹھیک ہے، ہمیں کم از کم خداوند سے مشورہ کرنا چاہیے. اب اخیب بالکل خاموشی سے باہر جا رہا تھا. اخیب کے کام کرنے کا اپنا انسانی، جسمانی اور مشینی طریقہ تھا. کلیسیا، میں یہاں حیران ہوں، کیا یہاں کئی بار ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں؟ اس کا اندازہ لگائیں اور کہیں، ٹھیک ہے، یہ اس طرح ہونا چاہیے اور ہم اسے اسی طرح ترتیب دیں. میرا خیال ہے امریکی بشارت کا ایک بہت بڑا حصہ اسی مقام پر کھڑا ہے. میں کہتا ہوں ہم نے اسے ہالی ووڈ بشارت بنا دیا ہے. زیادہ تر چمک دمک ہے. آج ہم دیکھتے ہیں مبشر جب پلیٹ فارم پر آتا ہے، او میرے خدایا، وہ مکمل طور پر پھولا ہوتا ہے اور منادی شروع کرنے سے پہلے بہت سارے لطیفے سناتا ہے اور وغیرہ وغیرہ، اور ممبر پر ایک مسخرے کی طرح کام کرنا جاری رکھتا ہے. جب قربان گاہ سے پکارنے کا وقت آتا ہے تو لوگوں کو آلٹر کال میں کوئی سنجیدگی نظر نہیں آتی ہے. یہ ٹھیک بات ہے. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا نیم گرمی کی حالت میں ہے. وہ اس حالت میں ہے. مجھے آج حیرت ہوتی ہے، اور آج ایسا ہی ہے. میں کلیسیا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے لڑکوں کو سکول بھیجیں تاکہ نفسیات سیکھیں اور وغیرہ وغیرہ، تاکہ یہ جانیں کہ کسی پروگرام کو کس طرح پیش کرنا ہے، ممبر پر کیسے جانا ہے اور اپنا انتظام کیسے کرنا ہے. پیغام بہت زیادہ دلکش ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو کھینچا جائے اور ان کی توجہ پر قابض ہوا جائے. اور بہت سارے عظیم ماہر نفسیات کے استادوں کی طرح باہر جاتے ہیں اور ڈرامہ کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. اور میں حیران ہوتا ہوں جبکہ وہ वो हम हमेशा कलीसिया की खूबसूरती और कशिश के बारे में बताते रहते हैं, लेकिन हम उन्हें ये बताने में नाकाम रहते हैं। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। मैं हैरान होता हूँ, हमने अंदर आने वाले शख्स के लिए कलीसिया की खूबसूरती को बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं बनाया है। मिसाल के तौर पर आज बैप्टिस्ट चर्च का एक नारा है 44 में मजीद 1 मिलियन है और हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में गैर तब्दील शुदा मेंबर्स हैं। बस लोग अंदर आते हैं और चर्च से जुड़ जाते हैं और चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट इस चीज का मकरूज है क्योंकि ऐसे अराकीन को शामिल करते हैं। वो अभी तक शराब पीते हैं, वो अभी तक सिगरेट पीते हैं, वो अभी तक जुआ खेलते हैं, वो अभी तक झूठ बोलते हैं। वो चर्च में आते हैं और हॉलीवुड से उठने वाले मुबशरों के ग्रोह से तफरी की तवक्को करते हैं जो प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा चमक दमक और बहुत सारे बड़े आला जात ऊपर नीचे तरतीब से लगाते हैं, जबकि इसे पुरानी तर्ज का होना चाहिए। सबसे पहले खुदा होना चाहिए, रोना चिलाना और कुर्बानगाह की बुलाहट होनी चाहिए, जहां मर्द और खवातीन चमक दमक दिखाने ना आते हों या जोकर का किरदार अदा करने ना आते हों, बल्कि अल्टर पर यीशु मसीह की मौत को महसूस करने के लिए आते हों जो उनके लिए वहां हुआ था, ताकि वो उस खुदा के साथ दोबारा मुखलिस हो जाएं। मेरा ख्याल है, क्या हम उस किस्म के दौर में नहीं रह रहे हैं जिसमें हम अजीम मुबशरीन को ले रहे हैं जो आज दुनिया भर में जा रहे हैं और अजीम मारूफ मुबशरीन हैं जो नफ्सियात का मुतालिया करते हैं और लोगों को चर्च की तरफ रागिब करते हैं, लेकिन जब आप उन्हें एक बार चर्च में दाखिल कर लेते हैं तो आप उनके साथ क्या करेंगे? चर्च में दाखिल होने के बाद उनके साथ क्या क्या होने वाला है? बस चर्च में शामिल होते ही और उसी गुनाह और उसी ख्वाहिश के साथ वापिस जाते हैं जिसके साथ वो चर्च में आए थे, वो उसी तरह वापिस चले जाते हैं और यही वजह है कि आज दुनिया उन्हें देख रही है। कहते हैं अच्छा है, अगर उस आदमी के पास मजहब है, अगर इस आदमी के पास मजहब है, मुझे डर लगता है क्योंकि हमने इसे बहुत आसान बना दिया है। मैं प्यार करता हूँ, ये है, मैं सोचता हूँ खुशी, यकीनन मुझे यकीन है कि तमाम खुशियाँ यीशु मसीह में पाई जाती हैं। ये ठीक है, मुझे यकीन है ये खुशी और शादमानी से भरपूर है, लेकिन याद रखें भाई, ये अजियत और तकलीफ और सलीब का रास्ता है, आपको इसका भी एहसास होना चाहिए। ये ठीक है, मेरा ख्याल है क्या हमने इसे थोड़ा ज्यादा ही नहीं रंग दिया है? जैसे मैं देख रहा था और मेरी बीवी ने कहा, मैं बाहर निकलने लगा था और उसने आज सुबह मेरे कोट पर फूल लगा दिया था। उसने कहा आपको ये लगाना चाहिए, आपकी माँ जिंदा है, और मैंने कहा ओ प्यारी मुझे मालूम नहीं था, मदर्स डे बहुत अच्छा है, लेकिन ये दुनियादारी की तरह बन गया है, उन्होंने इसे तजारती बना दिया है सिर्फ फूल और बाकी चीजें बेचने के लिए। देखें, ये माँ की बदनामी है क्योंकि मेरी माँ साल के हर दिन मेरी माँ है। जी हाँ जनाब, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है। मैं पूछना चाहूँगा क्या आप अपनी माँ से प्यार करते हैं? मैंने गुजरे मदर्स डे पर उसे फूलों का एक गुलदस्ता भेजा था। ठीक है भाई, लेकिन उसे हर रोज माँ बनाए। देखें, ये तो तजारत है, फूल खूबसूरत है, मुझे एक सुंदर फूल पसंद है, मैं उसके बारे में बिल्कुल इसी तरह सोचता हूँ, फूल कितना खूबसूरत है, ये खिलता है और इसमें से खुशबू आती है और रागीर इसे सूंघता है, जानवर आता है और इसे सूंघता है, लेकिन अब देखें ये खूबसूरत है, जैसे खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया सुंदर है, ये सबसे शानदार चीज है, इलाही शिफा और कुव्वत और मोजज़ात और निशान और अजीब काम और गुनाहों से आजादी है, ये एक खूबसूरत मकाम है, लेकिन उस फूल पर गौर करें, हमें पूरी फितरत की तरह चर्च में आना होगा। गुलाब खूबसूरत है और मुल्क की हर गाय उसे खा जाती अगर वो ऐसा कर सकती, लेकिन कुदरत ने छोटे छोटे खार वहाँ लगाए हुए हैं, छोटे छोटे नेजे वहाँ लगाए हुए हैं जिसे हम कांटे कहते हैं, और वो इन्हें छोड़ देती हैं, ये उसकी हिफाजत करते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है, और मैं सोचता हूँ इसके लिए आज हमारे पास खुदा का कलाम नहीं है जो दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है। चारों जानिब खुदा की खूबसूरत पाकीज़गी की कुदरत मौजूद है। मुल्क की हर गाय जो इसे खाने आएगी हम उसे काट डालेंगे, ये उसका इंतजाम करेगा, कलीसिया इस चीज की मकरूज रहेगी। ये ठीक बात है, मैं सोचता हूँ आज हमें पुरानी तर्ज के खुदा के बुलाए हुए आम खादमों की ज्यादा जरूरत है। हो सकता है ज्यादा तालीम याफ्ता ना हो, वो अजियत उठा लेंगे, लेकिन लोगों को मजबा पर ले आएंगे, खुशी और हंसी और चिंगम चबाते हुए नहीं, या एक कागज पर उनके नाम लिखते हुए नहीं, बल्कि भाई ایک پرانی پکار اور مرتے ہوئے کی طرح، تاکہ مرد اور عورتیں اپنے گناہوں سے اچھی طرح توبہ کر لیں اور خدا کے قریب آ جائیں۔ آمین۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم ایسا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں جو مسیح کو قبول کرنا چاہتے ہیں، سب اس طرح کرتے ہیں، یہ سب ٹھیک ہے بھائی، لیکن ایسا کرنے سے گناہ خارج نہیں ہوتا ہے۔ پہلے آپ کو درستگی سے توبہ کرنی ہوگی، پھر گہرائی اور سچائی سے پکاریں۔ میں وہ وقت یاد کر سکتا ہوں جب پرانی طرز کے لوگ اونچی نیچی سڑکوں پر اور گلیاروں پر چلتے ہوئے جاتے تھے اور اپنے پڑوسیوں سے بات چیت کرتے تھے اور پکارتے تھے۔ وہ اس دن کے مسیحی تھے جو انہیں خداوند کی چیزوں کے بارے میں بتاتے تھے، اور آج ہم اپنے نام چرچ کی کتاب میں لکھواتے ہیں اور باہر جاتے ہیں اور گھر میں آ کر بیٹھے رہتے ہیں اور اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہتے ہیں۔ کوئی فکر نہیں ہے، بہرحال ہم چرچ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سب ٹھیک ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم لوگ وہاں غلط ہیں، جانچیں، کیونکہ عدالت میں یہ چیز کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ نہیں جناب، یہ نہیں ہو سکے گی، اس سے کم نہیں۔ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور روزانہ مرے، وہیں صلیب پر مرے رہیں، یہ ٹھیک ہے، دکھ برداشت کریں۔ راستہ، میں اس راستے کو اختیار کروں گا۔ آپ یہ گاتے ہیں، خداوند کے چند حقیر لوگوں کے ساتھ چلوں گا۔ میں آج سوچتا ہوں ہم کس دور میں رہ رہے ہیں جہاں انجیل کی بشارت کو بڑی بڑی روشنیوں میں رکھ دیا ہے، اور وہ کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ مبشر کو شہر میں آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ حیران ہوتے ہیں، میری عبادات اس طرح قصوروار رہی ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں کہ شہر میں کون آ رہا ہے، مبشر یا یسوع مسیح؟ کیوں؟ ان کے پاس زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ میں یہاں ایک جگہ گیا تھا جہاں ایک خاص مبشر نے آنا تھا، اور یسوع کا نام، دیکھیں، ان کے پاس اس مبشر کی تصویر تھی۔ اس گھڑی کا آدمی، یہ آدمی اس کے ساتھ ہے، اور وہ آدمی اس کے ساتھ ہے۔ میں بعض اوقات اپنی خدمت کے بارے میں سوچتا ہوں اور لوگوں کو آتے دیکھتا ہوں، تو میں ہوٹل کے ایک کمرے میں جا کر کہتا ہوں، اے خدا، یہ لوگ کس سے ملنے آ رہے ہیں، مجھ سے یا آپ سے؟ سمجھے؟ اگر یہ مجھ سے ملنے آ رہے ہیں تو اب تک یہ کھوئے ہوئے ہیں، بس اے خدا مجھے گرا دے، مجھے ہٹا دے، میں آپ کی نمائندگی کرنا چاہتا ہوں، اس کی نمائندگی جس کے سامنے کسی دن ہم کھڑے ہوں گے، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اور کانپتے کمزور جسم کے ساتھ تجھے دیکھیں گے، یہ جانتے ہوئے کہ تیرے فیصلے پر میری روح کا انصار ہے۔ آئیں مسیح کو اونچا کریں۔ آج آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، میں بیپٹسٹ سے تعلق رکھتا ہوں، میں ایک میتھوڈسٹ ہوں، میں ٹیبرنیکل سے تعلق رکھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں۔ او، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ذرا بھی نہیں۔ بعض اوقات مجھے تعجب ہوتا ہے، زیادہ عرصہ نہیں ہوا، یہاں میں نے ایک اشتہار دیکھا کہ ایک خاص مہم شہر میں ہو رہی ہے، اور اس طرح اس آدمی کا نام اور اس آدمی کے نام کے الفاظ ہر طرف بڑے بڑے حروف میں لکھے ہوئے تھے، اور نیچے حصے میں ایک چھوٹے سے کونے میں لکھا ہوا تھا، یسوع مسیح کل، آج، بلکہ اب تک یکساں ہے، نیچے کونے میں لکھا ہوا تھا، سمجھے؟ انہوں نے مسیح کی تمام تقدیس لے لی ہے اور اسے کسی آدمی پر یا کسی گرجا گھر پر یا کسی تنظیم پر ڈال دی ہے۔ بھائی، میں بتا رہا ہوں، آپ چمک دمک کے ساتھ ہالی ووڈ کے جوکر اس طرح حاصل کر سکتے ہیں، اس میں گرجا گھر کے ذریعے، لیکن یسوع مسیح کی موجودگی میں وہی ایک ہے جو جلال پاتا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اب یہ سچ ہے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، مجھ پر غصہ نہ کریں، آپ صرف یاد رکھیں کہ میں آپ کے لیے منادی کر رہا ہوں، میں اس طرح منادی کرنا چاہتا ہوں گویا یہ آخری واز ہے جس کی میں نے اپنی زندگی میں کبھی منادی کرنی تھی۔ میں ہر واز کی منادی اس طرح کرنا چاہتا ہوں گویا میں ایک مرتا ہوا آدمی ہوں جو مرتے ہوئے لوگوں کے لیے منادی کر رہا ہوں، اور میں مر رہا ہوں، ہر دن میری روشنی جل کر ختم ہو رہی ہے، آپ کی بھی ہو رہی ہے، اور ہم مرنے والے فانی ہیں، اور ہمیں انہی دنوں میں کسی دن زندہ خدا کا سامنا کرنا پڑے گا، اور بہتر ہے ہم اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچیں۔ صرف چمک دمک کو جاری رکھنا اور گرجا گھر میں شامل ہونا اور یہاں اور وہاں جانا اور اس طرح اور اس طرح کرتے رہتے ہیں، بہتر ہے کہ ہم اپنے گھروں میں پرانی طرز کی دعائیں عبادات کریں اور دن رات خدا سے فریاد کرتے رہیں۔ وہ دن قریب ہے، اذیت ناک وقت ہے، مصیبت کا وقت ہے، بائبل نے کہا ہے یہ ایک سیاہ دن ہے، اور ہم اس میں رہ رہے ہیں۔ کیسے یہ عظیم آدمی جوش و خروش میں وہاں چلا گیا، اس نے اپنے آپ کو نیم گرم اور سرحدی لوگوں کے ساتھ جوڑ لیا اور سوچا کہ وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، اس نے سوچا کہ خدا اسے برکت دے رہا ہے، اور اس بات کا ٹھیک احساس نہ کرتے ہوئے وہ اس سارے گروہ کو अपने साथ ला रहा था। क्या हमारा छोटा ग्रोह जो कि यहाँ यहूदा का है नीचे आएगा और इसराइल के अजीम ग्रोहों के साथ शामिल हो जाएगा और हम कितने ताकतवर लोग हो जाएंगे। आप यहाँ हैं और ये वही फरेब है जिसे शैतान इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है ताकि मुखालफ मसीह को अंदर लाया जाए। ये बिल्कुल उतनी ही पक्की बात है जितना कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। हम सब मुतहिद होकर ये कोशिश करेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर दो शख्स वहाँ मुतफिक ना हो तो क्या इकट्ठे चल सकते हैं? ये रियासत आए मुतहदा बिल्कुल वही तजर्बा और वही गलती कर रही है। जब इसने रूस के साथ दोबारा इतिहाद कर लिया था उस वक्त वो जंग के लिए बिल्कुल तैयार थे और इसने खुद को रूस के साथ बांध लिया था। और अब आप देखते हैं कि हमें क्या मिला है। क्या आप नहीं देखते? उन्होंने हमारे हवाई जहाज और हमारे तमाम राज और हमारे एटम बम और बाकी चीजें वहाँ रखी हुई हैं और हम पर चलाने के लिए तैयार हैं। रूहानी तौर पर भी बिल्कुल इसी तरह है। फिर हम देखते हैं कि यहूस्वत के इतिहाद करने के बाद उन्होंने मशवरा किया। अब देखें, बाहर की दुनिया पर गौर करें। उसने कहा, यकीनन हमारे यहाँ बहुत सारे अंबिया मौजूद हैं। हमारे पास उनसे बरी हुई एक सेमिनरी है। वो वहाँ जाते हैं और उन लोगों से मिलते हैं जिन्हें तरबियत दी गई थी, जो नफ्सियात जानते थे, जो उसके बारे में सब जानते थे। कहा, अब ऊपर आ जा और हम खुदावंद से पूछते हैं और मशवरा करते हैं। यकीनन वो सब अपने जिस्मानी फूले हुए दिमाग के साथ वहाँ आए और कहा, अब देखें, हम आप चढ़ाई करें, खुदावंद आपके साथ है और खुदावंद आपको उस जमीन का वो टुकड़ा देने जा रहा है और वो आपका होगा। आप अरामियों को तमाम रास्तों से वापस धकेलने जा रहे हैं। आप ये करने जा रहे हैं। उनमें से एक ने अपने लिए लोहे के सिंगों का एक बड़ा जोड़ा बनाया और ये कहते हुए इधर उधर भागना शुरू कर दिया। इसी तरह आप अरामियों को धकेलने जा रहे हैं। लेकिन यहोशुआ थोड़ा सा रूहानी था और उसने बेवकूफी की बातों को बर्दाश्त किया। ठीक है, खुदा हमें कुछ और यहोशुआ दे। हम इस हॉलीवुड की फजूलियात से तंग आ चुके हैं। ये ठीक बात है, ये नाटक करते हैं और कुछ बनने का ड्रामा करते हैं जो ये नहीं है, और मुतवज्जो करने के लिए ड्रामा साजी करते हैं। और फिर जब वो अंदर आते हैं तो उनके अंदर आने से आपको क्या मिलता है? ये ऐसा है जैसे किसी आदमी को कहा जाए, सहरा में तैराकी करने आओ। इससे आपके सर पर खारी रेत के सिवा और कुछ नहीं होता, बल्कि ये दुख का सबब बनती है। अब गौर करें, आप उन्हें कैसे अंदर ला सकते हैं? किसी दिन एक फला खतून ने मुझे बताया, एक आदमी ने कहा, मैं चर्च जाऊंगा, लेकिन जब मैं चर्च जाऊंगा तो मुझे क्या क्या मिलेगा? कहा, वो लोग खाने का एहतमाम करते हैं और वो इस और उस बारे में और बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं। और उस खातून ने कहा, मैं खामोश खड़ी थी क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि उसे कहाँ भेजूं। आप यहाँ हैं। कहा, काश मुझे कोई पुराना चर्च मिल जाए जहाँ वो वाकई पुरानी तर्ज के गीत गाते हों और खुदा प्रस्त जिंदगी बसर करते हों। बच्चे भूखे हैं, क्या वो कचरे के डब्बे से खाएंगे? ये जिंदा खुदा की कलीसिया पर मुनसर है कि वो उनकी परवरिश खुदा के हकीकी जिंदा कलाम से करे। उस सारी चमक दमक और मादी चीजों में यहोशुआ ने कहा, क्या यहाँ कोई और नहीं है? क्या कोई और? अखियब ने कहा, खैर आपको किसी और की क्या जरूरत है? हमारे पास मुल्क के 400 बेहतरीन मुंतखिब पढ़े लिखे आला दर्जे के आला लबास में मलबूस आदमी मौजूद हैं जो यहाँ खड़े हैं। इनमें से हर एक मुत्तफिक है, एक दिल और एक आवाज होकर कहा है, जाएं, खुदा आपके साथ है। मेरा ख्याल है क्या रियासत आए मुतहदा बिल्कुल इसी चीज का सामना नहीं कर रही है? मैं सोचता हूँ क्या खुदा की कलीसिया भी बिल्कुल इसी चीज का सामना नहीं कर रही है? मैं हैरान होता हूँ। खैर, कहते हैं देखें, वो कामयाब हो रही है, वो बड़ी अजीम इबादत कर रहे हैं। एक वक्त में उनके यहाँ हजारों होते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ क्या कोई और नहीं है? मैं सोचता हूँ क्या वहाँ कोई मुख्तलिफ नहीं है? हम देखते हैं हमारे यहाँ 6 हफ्तों में 30,000 तब्दील हो गए हैं और 6 हफ्ते बाद हमें एक भी नजर नहीं आता है। वहाँ कोई गड़बड़ है। ये ठीक बात है और ये सब चमक दमक और दिखावा है। दुनिया ने टेलीविजन के जरिए, रेडियो के जरिए, तस्वीरी शोज के जरिए और वहाँ के आउटलेट्स के जरिए और इस कौम को हॉलीवुड की बेहुदा चीजों के जरिए खराब कर दिया है। ये ठीक बात है, हर चीज बड़ी चमक दमक वाली बनती जा रही है। क्या ये सच नहीं है? आप जानते हैं कि ये सच है। हमारे पास पुरानी तर्ज का मजहब नहीं है जो हमारे पास बरसों पहले हुआ करता था, और इसकी वजह ये है कि उसे छोड़ दिया गया है। हम इस बात को देखेंगे, बस थोड़ी देर बाद आप समझ जाएंगे। क्यों? क्या खूबसूरत तस्वीर है? ये मुझे कहना चाहिए, एक हलचल मचाने वाली तस्वीर है। और यहाँ यह हुस्वत आकर कहता है, हाँ मैं इन सबको देख रहा हूँ, इनमें से हर एक ने अपनी डिग्रियाँ हासिल की हुई हैं। ये जो कुछ भी था, ये सब नबी या बड़े खादम बनने के लिए यहाँ आए हैं। ये बड़े कॉलेजों से निकल कर आए हैं, और ये वो सब हैं, ये नबी के बड़े स्कूल और वगैरह वगैरह से निकल कर आए हैं। ये सब एक बात पर मुत्तफिक है, ये सच है। लेकिन क्या यहाँ कोई और नहीं है? अच्छा, तुम्हें एक और का क्या करना है, जबकि 400 एक ही वक्त में रजामंदी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन उस आदमी के दिल में खुदा था, और वो जान गया था कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है। जी हाँ जनाब, उसे मालूम था वहाँ कुछ तो खराबी है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ, कलाम में इसका हवाला नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं जानता हूँ कि यहुस्वत जानता था कि अखियब एक रयाकार है, और वो खुदा के साथ दुरुस्त नहीं है, और एलिया ने उसके लिए खुदा के कलाम की पेशनगोई की थी, और खुदा जिस पर लानत कर देता है उसे कैसे बरकत दे सकता है। आमीन। दोस्तों, मैं आज रात वही बात कहता हूँ, और जिंदा खुदा की कलीसिया जो खुदा के साथ सच्चाई से खड़ी हुई है वही कहेगी, आप तेल और पानी को एक साथ मिलाकर ये नहीं कह सकते हैं ये निजात है, आप ये नहीं कर सकते। अपने आप को लग करना पड़ेगा भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। अगर कोई उम्मीद बाकी है तो हमें कुछ करना है, और उसे जल्दी करना है, क्योंकि उठाए जाने का वक्त करीब है। चीजों के ढेर लग रहे हैं, देखें, और कलीसिया बहुत दूर है। लोग हर किस्म के रसाले, किताबें, कहानियाँ और सब कुछ पढ़ते हैं। मैं आज जा सकता हूँ, मैं एक गिरजाघर जा सकता हूँ, और मैं कह सकता हूँ, ओ कितने ये जानते हैं, वो एक के बाद एक बड़ी बेदारियों के हर गीत को जानते हैं। अब किस सफे पर कौन सा गीत है वो ये जानते हैं, वो जानते हैं ये कौन है, वो जानते हैं सदर के लिए कौन दौड़ रहा है, और फलां के लिए कौन दौड़ रहा है, कितने फिल्मी सितारों ने शादी की है, ये और वो और बाकी सब कुछ जानते हैं। लेकिन खुदा के कलाम के बारे में वो बिल्कुल नहीं जानते हैं। आप यहाँ हैं, हम उन्हें ये दे रहे हैं, और वो अभी तक मसीही होने का दावा करते हैं, और लोग कसूरवार नहीं हैं। ये प्लेटफॉर्म के पीछे से दिया जा रहा है, जहाँ से ये आता है बिल्कुल ऐसा है, ये प्लेटफॉर्म के पीछे से है। वो उन्हें तमाम इकसाम के सुरताल सिखाते हैं, और तमाम इकसाम की ये और वो बातें और तंजीमों के बारे में बताते हैं, और नौजवानों के ग्रुप कैसे बनाने हैं सिखाते हैं, और वगैरह वगैरह। मैं सोचता हूँ, क्या इसकी अदायगी की गई है? इसके खिलाफ कुछ नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ, क्या ये खुदा का तकाजा है? जबकि यीशु ने कहा है, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, वो बादशाही में हरगिज दाखिल नहीं होगा। वो जो आना चाहे, मेरे पीछे चलना चाहे, वो अपनी खुदी का इनकार करे, यानी अपनी दुनियावी शहवत को खत्म करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे चले। सलीब मौत अज़ियत की अलामत है। वो जो एक मसीही बन जाएगा, वो खुद को अपने ख्यालात से अलग कर लेगा, वो अपने कामों से खुद को अलग कर लेगा, वो अपने आप को हर चीज से अलग कर लेगा, अपनी खुदी का इनकार करेगा, और इस मुकद्दस सलीब को उठाएगा, और हर रोज मेरे पीछे चलेगा। जो मेरे पीछे आना चाहेगा उसे ये करना पड़ेगा, यीशु ने ये कहा था। लेकिन आज हम कहते हैं, हर एक का बड़ा अच्छा वक्त गुजर रहा है, सब अपने हाथों से तालियां बजाते हैं, सब नारे लगाते हैं, हालेलुया, सब ये करते हैं, ओ हम किस तरह हलचल मचा रहे हैं, आमीन खुदाया, हम नए गीत बनाते हैं और उन्हें बहुत तेजी से गाते हैं, और ऐसा लगता है कि हम उनके साथ दीवार को आर पार कर देंगे, या वगैरह वगैरह। देखें, मैं सोचता हूँ, जब हम गीत गा रहे होते हैं तेरे करीब आकर मेरे खुदा, तो चर्च के लिए इस तरह के पुरानी तर्ज के गीत बहुत बेहतर रहेंगे। कुछ लोग नाचने वाले बैंड को बुलाते हैं। कल रात यहाँ नाचने वाले बैंड का एक लड़का बजा रहा था, और आज रात यहाँ जिंदा खुदा के कलीसिया में बजा रहा है। ये काम खुदा की नज़र में मकरूह है। पहले ऐसे आदमी को परखा जाए, और वो तौबा करे और फल लाए, ताकि जाहिर हो जाए कि वो खुदा के साथ दुरुस्त है। वो सीधा दुनियावी म्यूजिक को प्लेटफॉर्म पर ले आते हैं, वो हॉलीवुड की चमकती धमकती मुनादी को प्लेटफॉर्म पर ले आते हैं। देखें, क्या मैंने चंद हफ्ते पहले लुइसविल केंटकी में آپ کے خوبصورت شہر کا دورہ نہیں کیا تھا؟ میرا دل ٹوٹ گیا تھا جب وہ سب وہاں بیٹھے ہوئے خدا کے معجزات کو دیکھنے کے لیے تیار تھے، اور جیسے ہی آپ انجیل کی منادی کر لیتے ہیں وہ ایک سیکنڈ میں بڑھ جاتے ہیں اور اپنی پیٹ موڑ کر عمارت سے باہر چلے جاتے ہیں۔ یقیناً وہ اسے نہیں چاہتے ہیں، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، وہ باہر نکل جاتے ہیں۔ اور ان میں سے بہت سے پروٹیسٹنٹ بھی ہیں جو پروٹیسٹنٹ گرجا گھروں میں جاتے ہیں، وہ بڑھ چکے تھے، وہ بھی بہت زیادہ چمک دمک فضولیات اور چرچ ازم اور وغیرہ وغیرہ سے بھرے ہوئے ہیں، کیونکہ اب تک وہ زندہ خدا کی روح کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں۔ وہ دینداری کی وجہ تو رکھتے ہیں لیکن اس کی قدرت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ کیسا دن ہے جس میں ہم جی رہے ہیں؟ دیکھیں یہ کہاں تک ہوتا ہے۔ یہوشوت نے کہا، میں جانتا ہوں اخیب، یہ آپ کے 400 مناد ہیں، یہ سب اچھے نظر آنے والے لوگ ہیں، ان میں سے ہر ایک نے صاف کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اپنے بالوں کو کنگھی کی ہوئی ہے، اور وہ سب کچھ ان کے پاس ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے ڈی ڈی کی ہو، ان کے پاس تمام اقسام کی ڈگریاں ہوں، ہو سکتا ہے وہ اے سے زیڈ تک کلام کو جانتے ہوں، لیکن کیا آپ کے ہاں کوئی اور نہیں ہے؟ کیا کہیں کوئی اور نہیں ہے؟ اس نے کہا، ہاں ایک اور ہے، لیکن مجھے اس سے نفرت ہے۔ آپ یہاں ہیں، مجھے اس سے نفرت ہے۔ یاد رکھیں، اخیب ایک مذہبی آدمی تھا اور وہ مذہبی استاد تھے، لیکن وہ اس شخص سے نفرت کرتے تھے جس کے پاس سچائی تھی۔ کہا، مجھے اس سے نفرت ہے۔ کہا، وہ ہمیشہ میرے خلاف کچھ نہ کچھ بولتا رہتا ہے۔ وہ ایسا کرنے سے کیسے خود کو روک سکتا تھا؟ کیونکہ خدا کے کلام نے اسے مجرم ٹھہرایا تھا۔ اگر آپ خدا کے بندے ہیں یا خدا کی بندی ہیں تو آپ کیسے خود کو روک سکتے ہیں جبکہ گناہ اور باقی چیزوں کو دیکھتے اور جانتے ہیں اور اس ڈیر کے بوجھ کو اور باقی چیزوں کو پہچانتے ہیں، اور ایک دن میں لاکھوں انسانوں کو جہنم میں جاتے دیکھ کر کیسے خاموش کھڑے رہ سکتے ہیں؟ آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک دن کسی نے مجھ سے کہا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسے روک سکتے ہیں؟ میں نے کہا، نہیں، میں اسے روک نہیں سکتا ہوں کیونکہ خدا نے کہا ہے۔ لیکن ایک دن عدالت کے کمرے میں وہ بڑی سکرین کو لگانے جا رہی ہے اور کیمرے کو چلایا جائے گا اور یہ ٹیپ ریکارڈنگ چلائی جائے گی، اور میں وہاں کھڑا ہو کر اسے سننے جا رہا ہوں۔ میں گناہ کے خلاف اپنی آواز کے انتباہ کو سننا چاہتا ہوں۔ جب میری آواز اس کے خلاف ہوگی تو خدا میرا انصاف کرے گا۔ جی ہاں جناب، جبکہ ہم اس زندگی کو، اس نسل کو عدالت کے دن دوبارہ دیکھیں گے، یقیناً ہم ایک خوفناک وقت میں جی رہے ہیں، اور یہ ہے، اور ہم اسے دیکھتے ہیں۔ اور اس نے کہا، کیا کوئی اور نہیں ہے؟ اس نے کہا، ہے، لیکن مجھے اس سے نفرت ہے کیونکہ وہ ہمیشہ میرے خلاف برائی کی نبوت کرتا ہے۔ وہ ان سخت باتوں کی منادی کرنے سے کیسے خود کو باز رکھ سکتا تھا جبکہ وہ اس کام کو ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا؟ دیکھیں، اخیب ویسا ہی جیون جی رہا تھا جیسا وہ تھا، ویسا ہی کام کر رہا تھا اور ویسے ہی لوگوں کو لا رہا تھا۔ خدا کا ایک بندہ یا خدا کی ایک بندی گناہ کو ہر طرف جھڑکنے اور ملامت کرنے سے کیسے خود کو روک سکتے ہیں جب وہ چمکتے دمکتے ان نیم گرم منادوں اور عالموں اور ان جیسے دیگر لوگوں کو دیکھتے ہیں اور دھوکہ دہی کے تحت لاکھوں لوگوں کو جہنم میں جانے دے رہے ہیں؟ بہت سے، یہاں تک کہ ہولینس کے لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں۔ میں میتھوڈسٹ اور بیپٹسٹ کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر رہا ہوں، اور ان جیسے دیگر لوگوں کے بارے میں، وہ بھی ایسے ہی ہیں، لیکن یہ چیز ٹھیک آپ کی اپنی صفوں میں موجود ہے۔ میرے خدایا، پلیٹ فارم پر آتے ہیں اور مسیحت کو چھوڑ کر ہر طرح کی زندگی گزارتے ہیں، تمام ممالک میں سب لوگ اسی طرح کرتے ہیں، پھر وہ اسے مذہب کہتے ہیں۔ یہ ایک مذہب ہے لیکن یہ خداوند کی نجات سے بہت دور ہے۔ یہ ٹھیک ہے، ان کے پاس بس کام کرنے والے لوگوں کا ایک بڑا جھنڈ ہے، پھر جیسے ہی چھوٹے کام والے چلے جاتے ہیں، پھر پہلی چیز آپ جانتے ہیں، آپ ان میں سے ایک کو بھی نہیں دیکھ پاتے ہیں، چرچ خالی ہو جاتا ہے۔ بھائی، اگر ایک آدمی خدا سے محبت کرتا ہے تو وہ ہر بار گرجا گھر میں اپنی نشست بھرے گا، وہ اس سے دور نہیں رہ سکتا۔ یہ ٹھیک بات ہے۔ اب صرف چند منٹوں کے لیے دھیان دیں، میں جلدی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب سیدھا نقطے کی طرف آتا ہوں کیونکہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ غور کریں، پھر اس نے کہا، کیا یہاں کوئی اور نہیں ہے؟ اس نے کہا، ہاں ہے، لیکن مجھے اس سے نفرت ہے، وہ ہمیشہ میرے خلاف ہی نبوت کرتا ہے، وہ میرے خلاف بری باتیں کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہا، جاؤ اسے لے آؤ۔ اس نے کہا، اس کا نام مکایا ہے۔ لیکن اس آدمی کے اندر اتنا دین تھا کہ وہ یہ جان سکے कि ये लोग ठीक नहीं हैं, और कोई भी आदमी जिसे कभी भी खुदा की रूह ने जरा सा भी छुआ है वो जानता है कि ये चीजें जो आज मसीहत कहलाती हैं सही नहीं है। आप दुनिया या दुनिया की चीजों से मोहब्बत नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो खुदा की मोहब्बत आप में नहीं है, बाइबल ने ऐसा कहा है। अब देखें, उसने कहा जाओ उसे ले आओ, और वो चले गए। और फिर उसने एक छोटे से कासिद को भेजा, कलीसिया के डीकन या हो सकता है किसी और को भेजा। उसने वहाँ पहुँचकर कहा अब देखो मिकाया, हम तुझे अखियब और यहुस्वत के सामने लेकर जा रहे हैं। अब वो दोनों वहाँ बाहर बैठे हैं, और अब वो अजीम आदमी है, वो उस्ताद हैं और आलिम हैं, और इस तरह उन्होंने अपनी अपनी डिग्री हासिल कर रखी है, और हमारी सेमिनरी और हमारे यहाँ के तमाम चर्चेज इस बात पर अटल हैं कि ये खुदावंद की मर्जी है। अब तुम वही बात कहना जो वो कहते हैं तो मैं तुझे बताऊं, तू बेहतर लिबास पहनेगा और कैडिलैक कार में सवार होगा। मैं तुझे बताता हूँ, अगर तू ऐसा करेगा तो फिर तू एक अजीम आदमी बन जाएगा। जी हाँ जनाब, तू खुशहाल हो जाएगा। मिकाया ने कहा खुदावंद खुदा की हयात की कसम, मैं वही कहूँगा जो खुदा कहता है, आमीन। जी हाँ, वो मेरे दिल के ऐन मुताबिक एक आदमी है, मुझे पानी के साथ रोटी खानी पड़ सकती है। उसने कहा ऐसा करने पर उसके एक गाल पर और दूसरे पर मारा जा सकता है, लेकिन कुछ भी हो उसने सच कहा और उसके साथ खड़ा रहा। खुदा ने उसके सच होने की तस्दीक की। वो इतना मकबूल नहीं था लेकिन वो खुदा को जानता था। उस बूढ़े मिकाया को वहाँ लाया गया। उसने कहा ठीक है मिकाया, तुम इसके बारे में क्या कहते हो? उसने कहा चढ़ाई करें, चढ़ाई करें। कहा पुर अमन होकर चढ़ाई करें, आगे बढ़ें, तरक्की करें। मैं यही चाहता हूँ कि आप करें, लेकिन मैंने इसराइल को बेड़ों की तरह पहाड़ी पर बिखरे हुए बगैर चरवाहे के देखा है, ऐसा ही है। उसने कहा, और जब उसने ऐसा कहा तो अखियब ने यहुस्वत की तरफ मुड़कर कहा मैंने आपको क्या बताया था, वो पवित्र शोर करने वाला है, या क्या, माफ करें, ये जो कुछ भी था। बस उस आदमी ने कहा वो मैंने आपको क्या बताया था, वो आदमी सिर्फ मेरे खिलाफ बुराई की पेशनगोई करेगा। मैंने क्या कहा था, वो सिर्फ हमारे चर्च की मजम्मत करेगा और हमारे खुदाम की मजम्मत करेगा और हमारे मजहबी तरीके की मजम्मत करेगा। मैंने आपको क्या बताया था, वो ये कहेगा मैं उसको जानता हूँ, मैं उससे पहले उसके वालिद को भी जानता था, आमीन, मैं उससे पहले उसके वालिद को भी जानता था। जी हाँ जनाब, एक हकीकी मर्द खुदा है। कहा मैं जानता था, वो ये कहेगा। और फिर उसने कहा जी हाँ, कहा मैंने इसराइल को बेड़ों की तरह पहाड़ी पर बिखरे हुए बगैर चरवाहे के देखा है। और फिर उसने कहा मैं ये, और फिर उन आदमियों में से एक जिसके पास बड़े सिंह थे उसे धक्का देने जा रहा था, एक मुनाद ने चढ़ाई की और छोटे मिकाया को अपनी तरफ खींचा और उसके मुंह पर जितनी जोर से वो थप्पड़ मार सकता था मारा। कहा खुदा की रूह मुझसे निकल कर किस तरफ गई है, तुझे मालूम है? कहा उसने कहा उस वक्त तक इंतजार करो जब तक तुम असीरी में नहीं चले जाते, और फिर तुम्हें पता चल जाएगा वो किस तरफ गई है। ये ठीक बात है, उस वक्त तक इंतजार करें जब तक रूस यहाँ बैठा हुआ है और कौमों और इस जैसी चीजों को और इस मुल्क को काबू नहीं कर लेता, क्योंकि इसकी गुमराही की वजह से आप देखेंगे क्या सही और क्या गलत था। ये ठीक बात है, आप देखेंगे आया आपका नीम गरम मजहब अदायगी करेगा या नहीं करेगा। इस कौम को रोने दें, हंसी और ड्रामे की तरफ ना जाएं, इस कौम को तोबा के लिए घुटनों के बल होने दें। यही है जिसकी हमें जरूरत है। गिरजाघर में बहुत सारे लोगों को हासिल करना बेदारी नहीं है। हमें हर शराब खाने को बंद करने की जरूरत है, तमाम सिगरेट नोशी बंद करने की जरूरत है, फैक्ट्रियों को गिराने की जरूरत है। एक हकीकी पुरानी तर्ज की रूहुल कुद्दस की मुहिम शुरू करें, जहां मर्द और औरतें दिन रात मुंह के बल पड़े हुए रोते रहते थे। मैं आपको बताता हूँ ये इस कौम की अब तक की सबसे बड़ी पनागा होगी, ये सच है। ब्रैनम टैबरनेकल, इसकी हमाकत छोड़ दो, इसे यहाँ कुर्बानगाह पर वापिस आने दो और खुदा के साथ ठीक होने दो, पड़ोसियों के साथ और बाकियों के साथ और खुदा के साथ ठीक हो जाए। आप कोई हंगामा आराही नहीं करेंगे, ये दुनिया का मरकज बन जाएगा। ये ठीक बात है, देखें ये सच है। फिर उसने कहा खुदा का रूह मुझ में से निकलकर किस तरफ चला गया, और मिकाया ने कहा मैंने खुदा को उसके लश्कर को और उसकी मजलिस को जलाल में देखा है। आप जानते हैं खुदा की कभी कभार वहाँ ऊपर एक मजलिस होती है, وہ اپنے فرشتوں کے لیے کبھی کبھار آسمان پر ایک مجلس منعقد کرتا ہے اور اس نے کہا میں نے اسے تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے اور سب لوگ اس کے دائیں اور بائیں ہاتھ کھڑے تھے اور کہا وہ بات چیت کر رہے تھے ہم کس کو بھیجیں تاکہ وہ نیچے جا کر اخیب کو بہکائے اسے یہاں سے باہر نکالے اور ایلیا کی پیشن گوئی کو پورا کرے خدا نے جو فرمایا وہ ہونے والا تھا اس لیے ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ کون نیچے جا سکتا ہے اور ایک جھوٹی روح نیچے سے اوپر آ گئی بلا شبہ جہنم سے نکل کر خدا کے سامنے آ گئی اور کہا میں نیچے جاؤں گی اور میں ان منادوں میں جاؤں گی اور ان سب کو جھوٹی پیشن گوئی کرنے پر مجبور کروں گی او کیا اس نے انہیں تیش دلایا کیا اس نے انہیں مزاق خیز بنا دیا تب ایک نے کہا میں نیچے ان منادوں میں جاؤں گی اور ان میں سے ہر ایک کو جھوٹھی پیشن گوئی کرنے پر مجبور کروں گی اور وہ نیچے اتر کر ان منادوں کے اندر گئی اور وہ جھوٹھی پیشن گوئی کرنا شروع ہو گئے اور بھائی آج بھی وہی خدا اسی تخت پر راج کرتا ہے اور وہی جھوٹ بولنے والی روح آج بھی وہی کام کر رہی ہے اور جھوٹ کی پیشن گوئی کر رہی ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد وہ کہتے رہے امن 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 ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کہاں سے آئی ہے پہلی جنگ عظیم کے دوران جب فرانس نے خدا سے منہ موڑ لیا اور وہاں 90 کی دہائیوں میں خوشحالی پائی اور آغاز کیا اب میں اخلاقیات پر تھوڑی سی بات کرنے جا رہا ہوں لہٰذا آپ سب چند منٹوں کے لیے بالکل خاموشی سے بیٹھے رہیں وہاں پیچھے آغاز میں دیکھیں یہ فرانس ہی تھا جہاں سے بے حیائی اور گندگی شروع ہوئی تھی اگر دنیا میں کبھی کوئی گڑا تھا تو وہ پیرس فرانس ہے اور میں نے اس کا زیادہ تر سفر حال ہی میں کیا ہے اور یہ جگہ سب سے زیادہ بدتر ہے جسے میں نے کبھی دیکھا ہے اور لندن انگلینڈ اس سے زیادہ بچا ہوا نہیں ہے اور ریاست ہائے متحدہ اس کی عین قطار میں آ رہا ہے یہ ٹھیک بات ہے وہ اس مقام پر ہیں جب بھی آپ عورت کے اخلاق کو توڑتے ہیں تو آپ قوم کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دیتے ہیں آپ ان کے اپنے ممالک میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ایک مشنری ہیں تو وہ پسند نہیں کرتے کہتے ہیں آپ ہمیں ہماری بیویوں کے بارے میں یا ہماری لڑکیوں کے بارے میں کیا بتائیں گے وہ گندے گانے کیسے گاتی ہیں آپ ہمیں بتائیں گے اپنی بیویوں کو طلاق کیسے دینی ہے آپ ہمیں سکھائیں گے وسکی کیسے پینی ہے اور جس طرح ہم چلتے ہیں اس پر کیسے چلنا ہے ہم بس ایسے ہی ہیں ہم خود کو مسیحی قوم اور مذہبی قوم کہتے ہیں دیکھیں کیا افریقہ میں وہ بت پرست ہمیں اخلاق سکھا سکتے ہیں کیسے جینا ہے سب سے زیادہ گٹیا مقام ریاست متحدہ میں یا دنیا میں تقریباً یہ قوم ہے یہ کیسے ہوئی ہے میں ایک امریکی ہوں یقیناً لیکن بھائی میں اس میں مدد نہیں کر سکتا اخیب یا یہوسفت کے سامنے دیکھیں مجھے بتانا ہے جو خدا کہتا ہے وہ سچ ہے آج کلیسیا کو اسی بات کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اگر یہ بات قوم اور خدا کے درمیان آتی ہے تو ہمیشہ خدا کو اول رکھیں جی ہاں جناب غور کریں فرانس میں انہوں نے اپنی تمام خرابی کا آغاز کر دیا اور جس طرح وہ وہاں رہتے تھے اسی طرح چلتے رہے اور پھر خدا نے جرمنی کو ان کی طرف بھیجا تاکہ انہیں تھوڑا سا مارا جائے پھر ہم ان کی جان بچانے کے لیے وہاں گئے اور جیسے ہی ہم نے یہ کیا اور جنگ جیت لی اور جرمن لوگوں کو واپس بھیج دیا اور فرانس کے ساتھ صلح کر لی تو کیا وہ خدا کی طرف متوجہ ہوئے نہیں جناب عورتیں شراب نوشی بدکاری گناہ اور گندگی میں آگے بڑھ گئیں پھر انہوں نے کیا 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 ہوا یہیں سے اس نے آغاز کیا شیطان نے وہاں اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا اس نے دنیا میں اخلاقی خرابی کرنے کے لیے ٹھیک پیرس فرانس سے آغاز کیا پھر اگر آپ غور کریں تو جب وہ خدمت کے ذریعے یہاں نہیں پہنچ سکا تو اس نے ایک کام کیا وہ یہاں ہالی ووڈ کے ذریعے پہنچ گیا اس نے اپنا ہیڈ کوارٹر یہاں ہالی ووڈ میں بنا لیا چند سال پہلے 15 یا 20 سال پہلے شیطان اپنے بڑے لشکر کے ساتھ یہاں آ گیا اور ہالی ووڈ کیلیفورنیا پر وار کر دیا اور اس نے اپنی شیطانی طاقتوں سے ریاست ہائے متحدہ پر حملہ کر دیا ٹھیک ہے ہمارے تمام فیشن پیرس سے آتے ہیں اور وہ انہیں ہالی ووڈ سے سکرینوں پر چلاتے ہیں اور چھوٹی لڑکیاں اور چھوٹے لڑکے اور باقی لوگ جب باہر نکلتے ہیں وہ انہیں سکرین پر چلتے ہوئے دیکھتے ہیں چھوٹے بچے اچھے ہیں ان چھوٹے اچھے ساتھیوں کے خلاف کچھ نہیں ہے خداون ان کے ننھے دلوں کو برکت دے میرا دل ان کے لیے خون کے آنسو روتا ہے اور اسی شہر میں میں اپنی بات کر رہا ہوں ایک دن میرے بیٹے نے کہا اس نے کہا ڈیڈی یہاں علاقے میں کچھ لڑکے ہوتے تھے جن میں روح القدس تھا اور وغیرہ وغیرہ آپ سوچیں मैं डेनवर, कोलोराडो या इस तरह के मकाम से क्यों दूर जा रहा था? मैं अपने बच्चों को वहाँ ले जाना चाहता हूँ जहाँ लोगों का एक ऐसा हजूम हो जो खुदा के लिए रो रहा हो। भाई, इसकी हमें जरूरत है। ये मुल्क, ये कौम, ये शहर, ये जगह बहुत ज्यादा बद इखलाक हो गई है, यहाँ तक कि ये काबिले रहम है। काश मैं ठीक इसी घड़ी इस बात का इजहार कर सकता जिसको मैं मुकम्मल तौर पर सच मानता हूँ, वो इस मखलूत सामीन के सामने पेश करने के लिए मौजूद नहीं होगी। देखें, यहाँ इस अपने शहर में, यहीं पर, ना सिर्फ यहाँ बल्कि दीगर मकामात पर, हर जगह ये आसानी से आना शुरू हो गया है। क्या वजह है? लोगों, देखें दोस्तों, ये बहुत चलाक है, ये बहुत आसानी से आता है, यहाँ तक कि ये आपका गला गोंद देता है। शैतान हमेशा फैशन में आया है। देखें, वो फैशन से बाहर नहीं गया, वो अपने काम से बाहर नहीं गया। मैं आपको बताऊं, वो अभी तक अपने बिजनेस में है। आज देखें, हम देखते हैं, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा था, छोटी लड़की के बारे में बताया था, एक छोटी लड़की के पास एक गुलाब था। मिसाल के तौर पर, गुलाब खूबसूरत होता है, वो देखने के लिए होता है, ये सच है, और ये बिल्कुल चर्च की तरह है, ताकि इसे देखा जाए, एक खूबसूरत छोटी लड़की की तरह है जो वहाँ इसलिए है ताकि उसकी तरफ देखा जाए। ये ठीक बात है, लेकिन अगर वो अच्छी है और वो अपने शोर के लिए है तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर उसके पास अपनी हिफाजत के लिए इखलाकी तलवार मौजूद नहीं है तो वो माशरे और इंसानों के लिए गिरावट का सबब बन जाती है और इस कदर घटिया और नीच बन जाती है, यहाँ तक के कुत्ते भी उसकी तरफ देखना पसंद नहीं करेंगे। ये ठीक बात है, और यही बात जिंदा खुदा की कलीसिया के लिए भी है। वो यहाँ से बाहर निकलते हैं और अपने आप को खूबसूरत बनाने और निखारने की कोशिश करते हैं और ऐसे काम करते हैं, वो इनकी खवातीन को नंगा कर रहे हैं, ठीक है, और लोगों को ये एहसास तक नहीं है कि शयातीन इनके घरों पर हमला कर रहे हैं। एक दिन मेरे पड़ोस में एक नौजवान औरत थी जो मेरे ख्याल में एक अच्छी औरत है, और वो एक शादीशुदा औरत है, उसका एक बच्चा है, और वो छोटी औरत वहाँ से बाहर निकली और कोई आदमी कुछ काम करने सड़क पर आया हुआ था, और ये छोटी औरत छोटे छोटे कपड़े पहनकर बेहुदा हालत में बाहर निकल गई। ये मदर्स डे की एक बेहुदा बात है, लेकिन मेरे भाई, मुझे आपको कुछ बताना है। माँ दोबारा माँ बनने के लिए वापिस आए। यहाँ तक कि एक छोटा लड़का हमारे पड़ोस में आया हुआ था, उसने अंदर आकर हमें उसके बारे में बताया, वहाँ बाहर देखो। मैंने कहा, भाई ये तो कुछ भी नहीं है, वो औरत अच्छी औरत है, मैं ये नहीं कहता उसका इखलाक खराब है, लेकिन इसकी वजह ये है कि उस पर एक बदमजाज गंदी रूह है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है, और वो ये नहीं जानती है क्या दुनिया में कोई माँ या कोई औरत चाहेगी वो छोटे बेहया कपड़े पहनकर खुद को किसी आदमी के सामने पेश कर दे। आप खूबसूरत बहन हैं, आप खूबसूरत माँ हैं, मैं आपके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। देखें, आप खूबसूरत हैं, लेकिन अगर आपने इखलाकियात की हिफाजत करने के लिए रूहुल कुद्दस नहीं पाया है तो बेहतर होता, आप बहुत ज्यादा बदसूरत होती और कोई आपकी तरफ ना देखता और आप आसमान पर चली जाती। ये ठीक है, ये सच है, आप गौर करें, आप इखलाकियात के साथ क्या कर रहे हैं। अब ये क्या है, शैतान अंदर आ गया है और वो लोगों को ये बातें बता रहा है, वो मुनादों में घुस गया है, वो हॉलीवुड का नमूना तैयार कर रहा है, लड़कियां और नौजवान ख्वातीन हॉलीवुड के नमूने पर चल रही हैं। आज मुल्क में इनके पास बेहतरीन चीजें मौजूद हैं और रेडियो पर जो गुफ्तगू आप सुनते हैं सबसे ज्यादा गैर इखलाकी है। मिस के स्टार जैसी बूढ़ी औरत है, उसके खिलाफ कुछ नहीं है, लेकिन किसी 50 साल की बूढ़ी औरत को इस तरह देखना कि वो पूरी कपड़ों में फंसी हुई है जैसे उसे आटे की बोरी में डाला गया है, मैं ये बात मजाक के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं इन चीजों के खिलाफ बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई औरत ऐसा अमल करती है तो वो नौजवान अमरीकी खवातीन के लिए एक मिसाल बन जाती है। ये हमारी कौम को उकसाना है, ये शैतान है। आर्थर गॉडफ्री और बाकी ऐसे लोग इधर उधर भाग रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जो वो चाहते हैं, और मुल्क के सबसे मशहूर आदमी भी ऐसे ही हैं। और देखें, ये बेइज्जती है। हालेलुया, ये इसलिए कहा है क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूँ रूहुल कुद्दस यहाँ मौजूद है, हमला जारी है, घर से घर तक, जगह से जगह तक, कलीसिया से कलीसिया तक, आदमी से आदमी तक फैल रहा है। बच्चों, यीशु मसीह के नाम में इखलाक की बेदारी के साथ और खुदावंद यीशु मसीह के साथ बेदार हो जाओ और कहो, मैं खुदावंद के चंद हकीर लोगों के साथ راستہ اختیار کروں گا. جی ہاں جناب، میں ایک حقیقی ماں بنوں گی، میں ایک حقیقی باپ بنوں گا. جب ساری دنیا سے اور چاروں اطراف سے میری روح ہر طرف سے تنہا ہو جاتی ہے، پھر وہی میری ساری امید اور سہارا ہے، کیونکہ میں مسیح ٹھوس چٹان پر کھڑا ہوں. باقی ساری زمین گرتی ہوئی ریت ہے. باقی ساری زمین ان سب چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ ادام کے ایسے ایمال کی وجہ کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو منادوں سے لوگوں کے لیے جھوٹی پیشن گوئی کرواتی ہے؟ برسوں پہلے ایسا کیوں ہوا کہ آپ میتھوڈسٹ لوگ، جب جان سمتھ اپنے ممبر پر آیا اور خوشخبری سنانے کے لیے اس نے 4 گھنٹے کا مختصر پیغام دیا، تو اس نے کہا میری پریشانی یہ ہے کہ میرا دل ٹوٹ گیا ہے. اس نے کہا آج میتھوڈسٹ بیٹیاں اپنی انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنتی ہیں، اور آج وہ مختصر اور بے حیا کپڑے پہنتی ہیں، اور اگر کچھ نہ کیا گیا تو وہ مزید 5 سالوں میں بالکل اڑیاں ہو جائیں گی. آپ میتھوڈسٹ منادوں کو، آپ کیمبل لائٹس کو، آپ بیپٹسٹ کو کیا ہو گیا ہے؟ جی ہاں جناب، یہ شیطان ہے. اس نے اپنی قوتوں کو نیچے بیچ دیا ہے، اور اس نے اپنے چھوٹے شیاطین کو یہاں چھوڑ دیا ہے، اور آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے. آپ سگریٹ پیتے ہیں، اور آپ خواتین بھی وہی کر رہی ہیں جو آپ کا من چاہتا ہے. آپ شراب پیتے ہیں اور اسی راستے پر چلتے جا رہے ہیں. آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ آپ اپنے نظام کو زہر آلودہ کر رہے ہیں، اور پوری نسلوں کو جو آپ کے بعد آنے والی ہیں برباد کر رہے ہیں، اگر کوئی باقی ہے. سگریٹ پینے سے 85% کینسر میں مبتلا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، اور آپ جان بوجھ کر ان میں داخل ہوتے ہیں، اور کلیسیاں اس کی تائید کرتی ہیں. ایک بڑے بیپٹسٹ گرجا گھر میں یہیں حال ہی میں، میں بیپٹسٹ کے بارے میں بات کر رہا ہوں، مجھے اس کا حق حاصل ہے. وہ اس طرف جھکے ہوئے ہیں جہاں سے میں نکل آیا ہوں. دیکھیں، وہ تبلیغی خدمت اور سنڈے سکول سروس کے درمیان ایک وقفہ دیتے تھے. تاکہ پادری اور باقی لوگ باہر جا کر سگریٹ پی سکیں، اور سڑک پر مرد اور عورتیں سگریٹ پیتے تھے. شیطان نے ایسا کیا ہے، یہ ٹھیک بات ہے. پھر یہاں ہمارے اپنے شہر میں بالکل نیچے نیو البانی میں ہمارے سب سے نمایاں خدام میں سے ایک ہیں، اس کھیل کے میدان میں ہمارے شہر کے ممتاز خدام میں سے ایک ہیں، جو سکوائر ڈانس پروگرام کی ہدایت کاری کر رہے ہیں تاکہ مردوں اور عورتوں کو پلیٹ فارم پر لائیں. اس کی پرواہ نہ کریں کہ دنیا کیا کہتی ہے. مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے وسیلے آپ کیسے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی، کوئی سرخ خون والا آدمی کسی دوسرے مرد کی بیوی کے پاس کچھ محسوس کیے بغیر نہیں آتا ہے. آپ جانتے ہیں یہ سچ ہے. انہوں نے ہماری عورتوں کو لے لیا ہے اور ان کو ننگا کر دیا ہے. یہ دفتروں میں جاتی ہیں اور ٹیکسی چلاتی ہیں اور سڑک پر مٹک مٹک کر چلتی ہیں، جبکہ انہیں گھر میں چولہے کے پیچھے کھانا پکانے اور رات کا کھانا تیار کرنے میں مشغول ہونا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ شیطان ہے، حملہ جاری ہے. میں اس فرد یا اس فرد کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ناپاک روحیں ہیں جو لوگوں کو اپنے قبضے میں لے رہی ہیں، انہیں اس کی طرف لے کر جا رہی ہیں. یہ ریاست آئے متحدہ پر حملہ ہے. کلیسیا کا تختہ الٹ دیا ہے. کلیسیا کو شیطان نے اکھاڑ پھینکا ہے وہاں پیچھے. اب وہ ایک لڑکے کو لیتے ہیں، اور جب وہ سیمینری میں آتا ہے تو سب سے پہلے اسے ڈگری حاصل کرنا سکھایا جاتا ہے. اسے نفسیات سیکھنی ہوتی ہے، اسے الہیات سیکھنی ہوتی ہے، اسے تمام اقسام کی باتوں کو سیکھنا ہوتا ہے. اگر اس نے اچھی طرح تعلیم حاصل نہیں کی ہے، اگر وہ ہوشیار یا روشن خیال نہیں ہے جیسا کہ اسے ہونا چاہیے تھا، تو وہ اسے باہر نکال دیں گے. وہ اہل نہیں ہے. اسے کیا کرنا چاہیے؟ تاکہ باہر جا کر ایک مختصر سیاسی تقریر پیش کر سکے جیسے کی جاتی تھی. لوگوں کے ایک گروپ سے، مرنے والے مردوں اور عورتوں کے ایک گروپ سے سیاسی گفتگو کر سکے. اے خدا، ہمارے پاس کچھ پرانی طرز کے ساسافراس کے اشخاص کو بھیج جو اے سے بی کو بھی نہ جانتے ہوں، لیکن خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی قوت کو جانتے ہوں، جو توبہ کی منادی کریں اور مردوں اور عورتوں کو قربان گاہ پر بھیجیں تاکہ خداوند یسوع سے محبت کریں. یہ ایک قرض ہے. اس نے سیمینریوں پر حملہ کیا ہے، اس نے گرجا گھروں پر حملہ کیا ہے، اس نے ہماری عورتوں کو برہنہ کر دیا ہے، اس نے ہمارے آدمیوں کو ایسی جگہ پہنچا دیا ہے کہ آپ انہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. اور مرد اور عورتیں، میرا خیال ہے آپ کہتے ہیں خیر عورتیں، جی ہاں، اور آپ مرد جو اپنی بیویوں کو ایسا کرنے کی اجازت دیتے ہیں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کس چیز سے بنے ہوئے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یقیناً یہ بےزتی ہے، یہ افسوس کی بات ہے۔ اور پھر مناد کی طرف دیکھیں، مناد آج ایک جدید ممبر کے پلیٹ فارم پر کھڑا ہوتا ہے، وہاں اپنے لوگوں کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ توبہ اور گناہ اور مسیح کی کھردری صلیب کے علاوہ دنیا کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کی منادی کرتا ہے۔ جی ہاں، بشارتی عبادت میں لوگ آپ کو سننے کے لیے آئیں گے، لیکن جب آپ حقائق بیان کریں گے اور آپ اس چیز تک پہنچنے اور انجیل کی منادی کرنے کی کوشش کریں گے اور لوگوں کو توبہ اور درستگی کی طرف لانے کی کوشش کریں گے، تو وہ اوپر اٹھیں گے اور باہر چلے جائیں گے، کیونکہ انہیں یہ نہیں سننا ہے۔ نہیں، وہ یہ نہیں چاہتے ہیں، لیکن بھائیو، انہیں توبہ کرنی پڑے گی ورنہ ہلاک ہو جائیں گے۔ شیاطین، آپ سکول جائیں، اس نے سکولوں پر حملہ کر دیا ہے۔ آج پورے ملک کو ادھر ادھر سے دیکھیں، یہاں دیکھیں، آپ لوگ، آپ جو پروٹیسٹنٹ ہیں، دیکھیں، آج یہاں چار بڑے بڑے عظیم کیتھولک سکول اور باقی چیزیں بنائی گئی ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ آپ اپنی دفاعی حالت کو کم کر رہے ہیں۔ کیتھولکزم کے خلاف کچھ نہیں ہے، حالانکہ میں اس پر ایمان نہیں رکھتا ہوں، میں ایک پکا پروٹیسٹنٹ ہوں، یہ بالکل درست ہے، ثابت کر سکتا ہوں۔ وہ نہیں، آپ ان کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں پرواہ نہیں، بائبل کیا کہتی ہے، ہمیں معلوم ہے کلیسیا کیا کہتی ہے۔ خدا اپنے کلام میں ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا رہتا ہے۔ لیکن کچھ کیتھولک اپنے گرجا گھر سے چپکے رہتے ہیں تاکہ آپ کو اپنے اوپر پروٹیسٹنٹ ہوتے ہوئے شرم آئے، لیکن آپ بس بائبل سے چپکے رہیں جیسے وہ اپنے گرجا گھر سے چپکے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ غلط ہیں۔ میں قادر مطلق خدا کے اختیار کے وسیلے یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ غلط ہیں، بالکل غلط ہیں۔ اور جس طرح سے آپ کر رہے ہیں، آپ پروٹیسٹنٹ بھی غلط ہیں، کیونکہ آپ واقعی بہتر جانتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ یہ بات آپ کو ایک منافق بنا دیتی ہے۔ یقیناً یہ حملہ ہے، کلیسیائیں گر رہی ہیں، اور اب اس کی بجائے کلیسیا چرچ کو خوبصورت بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے، ایک بڑا چرچ بنانے، اس پر بڑے بڑے مینار لگانے اور بڑے بڑے سنگیت کے ساز لانے میں لگی ہوئی ہے، اور ہر ایک کام کیتھولک چرچ کے نمونے پر کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ آپ کیتھولک کلیسیا کے نمونے پر بننے کی آرزو مت کریں، کیونکہ وہ تباہی کی طرف جانے والی ہے، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے، وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ اگر آپ اس کی پیروی کر رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ لیکن آج ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایک بڑا مینار نہیں، ایک بڑا چرچ نہیں، بلکہ پرانی طرز کی قربان گاہیں ہیں جہاں گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے، ان مردوں اور عورتوں کی مقدس دعاؤں کے وسیلے جو خداوند یسوع مسیح سے محبت کرتے ہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں، یہی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ دوستو، میری بات سنیں، مجھے سنیں، یہ محبت ہے۔ میرا وقت ختم ہو گیا ہے، اب میں صرف اس پر انحصار کروں گا۔ میں اس حملے کے بارے میں تھوڑی دیر بعد بات کروں گا کہ اس وقت یہ کہاں پہنچ گیا ہے۔ اس نے ہماری قوموں پر حملہ کیا ہے، اس نے ریاستہائے متحدہ پر حملہ کیا ہے۔ اب یاد رکھیں، میں نے اپنی زندگی میں کبھی ووٹ نہیں ڈالا۔ دیکھیں، اس میں گھمنڈ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اگر میں یہ کرنا چاہوں تو بطور امریکی یہ میرا پیدائشی حق ہے، لیکن میں اپنے دوستوں کے بارے میں بہت زیادہ سوچتا ہوں تاکہ انہیں وہاں رکھوں۔ دیکھیں، میں نے انہیں اچھے آدمیوں کی طرح اندر جاتے دیکھا ہے اور برے بن کر باہر آتے دیکھا ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں۔ میرے پاس ایک کام ہے، میں یہاں ایک ایسے شخص کے لیے ایک پلیٹ فارم تیار کر رہا ہوں جو امیدوار ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے، اور وہی ایک ہے۔ میں اپنا وقت اس کے لیے وقف کرتا ہوں، یہ ٹھیک بات ہے۔ اور اگر میں نے کلیسیا کو ٹھیک کر لیا تو باقی دنیا خود ٹھیک ہو جائے گی، یہ ٹھیک بات ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، جب مسٹر روز ویلٹ، وہ آدمی مر چکا ہے، اسے آرام کرنے دیں۔ مجھے یقین ہے وہ آرام میں ہے، اندر آیا اور تین یا چار دوروں کے ذریعے ابتدائی ڈکٹیٹرشپ قائم کر دی۔ میں آپ کو یہ ثبوت دے سکتا ہوں کہ کلام پاک میں یہ ہے، میں نے کہا تھا ایسا ہوگا، یہ ٹھیک بات ہے۔ ہمارے پاس مزید کوئی آئین نہیں ہے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، سب کچھ بکھر گیا ہے۔ ریپبلیکن بہت خراب ہو گئے ہیں، ایک کے چھ ہیں اور دوسرے کے آدھی درجن ہیں، اس لیے ہر بادشاہی ٹوٹنے والی ہے، لیکن یسوع مسیح کی بادشاہی قائم رہے گی اور ابد تک وہ حکومت کرے گا، یہ ٹھیک بات ہے۔ دانیل نے پہاڑوں سے तराशे हुए पत्थर को निकलते देखा और वहाँ की सियासी दुनिया से टकराया और उसे इस तरह पीस कर रख दिया जैसे पाउडर होता है, जैसे गर्मियों में गंदम को पीसा जाता है। और वो पत्थर एक अजीम पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर गया जो आसमान तक फैल गया और तमाम आसमानों और जमीन पर फैल गया। ऐसा ही है, सियासी दुनिया खत्म हो चुकी है, हमारी कौम टूट फूट का शिकार है। आप ये याद रखें कि ब्रदर ब्रैनम ने कहा था कि खुदावंद यूं फरमाता है, हमारी कौम तबाह हो चुकी, ये कभी नहीं उठेगी। बाकी तमाम अकवाम की तरह ये भी खत्म हो चुकी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कौम है जो आज यहाँ खड़ी है, लेकिन ये शैतान का बीज है जो उसने लोगों के दिलों में बो दिया है। ये हॉलीवुड में कैसे आया, ये लोगों में कैसे आया और इसका आगाज हो गया है और आप उन्हें कुछ भी नहीं बता सकते हैं। आप एक सदर को लाएं जो कोशिश करके विस्की बंद कर दे और शराब ममनू कर दे तो देखें क्या होता है। ऐसा करने के 2 घंटे बाद ही उसे गोली मार दी जाएगी। यकीनन वो ये नहीं कर सकता है, पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाएगी। जी हाँ जनाब, आप ये नहीं कर सकते हैं, वो खत्म हो चुकी है, उस पर हमला हुआ है और कम्युनिज्म की रूह ने कब्जा कर लिया है। आज हमारे स्कूलों में जाएं, हमारे स्कूलों के बच्चों को देखें, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, आपको उनके बारे में पता लगाना चाहिए कि क्या चल रहा है। यहाँ के स्कूलों में छोटी लड़कियों को और तकरीबन 14-15 साल की उम्र वाली लड़कियों को उनकी माएं स्कूल भेजती हैं, जबकि वो ज़हनी तौर पर इखलाकी तौर पर मुतासिर हो जाती हैं, जैसे नशा करने वाले और सिगरेट पीने वाले होते हैं। इस तरह की हर चीज छोटी उम्र में इस तरह के छोटे बच्चों को मुतासिर करती है। इनमें से किसी कुंवारी लड़की को तलाश करना इतना ही मुश्किल होगा जितना के गास के ढेर में सुई तलाश करना, जबकि वो लड़कों के साथ कंबल की तफरी करने जाती हैं और दरिया के किनारों और बाकी जगहों पर जाती हैं। और मैं आपको सबूत पेश कर सकता हूँ मेरे दोस्तों, मैं ऐसी बात मंबर पर नहीं कहूँगा जब तक मैं जानता नहीं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। हमारे जिलों के ठीक इन स्कूलों में, खासकर हमारे यहाँ के जिलों में, छोटी औरतों की ड्रेसिंग देखें, नहीं जानती हैं, अपनी माँ को बताती हैं कि वो फला फला जगह पर जा रही हैं, लेकिन लड़कों से मिलने जाती हैं, और यहाँ तक के लुइस मिल की सड़कों पर जिस्म फरोशी करती हैं, ये क्या है। और ये क्वायर्स में गाती हैं क्योंकि इन्हें एक छोटी सी समाजी अंजील सुनाई जाती है। मुनाद वहाँ खड़े होकर छोटी मोटी बातें करते हैं और बाइबल की छोटी छोटी कहानियाँ सुनाते हैं या इस तरह की कोई और बात बताते हैं, और तौबा की मुनादी करने और मर्दों और औरतों को मजबा पर लाने की बजाय ये करते हैं। उस लड़की का डैडी रात को अंदर आता है और अपना सिगार जलाता है, बियर का ग्लास लेता है और नीचे बैठकर पीता है। माँ दिन के वक्त बाहर होती है और किसी सामाजिक काम में या खवातीन के झुंड के साथ ताश खेलने में मसरूफ होती है। आप बच्चे से किसी और चीज की तवक्को कैसे कर सकते हैं। देखें, आप जिस माहौल में रहते हैं आप वैसे ही होते हैं। आप एक छोटी लड़की या छोटे लड़के को लें, उन्हें किसी के साथ रहने के लिए बाहर भेज दें। आप एक आदमी को लें, मैं अपने लड़के को ले लेता हूँ और उसे किसी के साथ रहने के लिए एक दिन बाहर भेज देता हूँ, मुझे उससे मिलने दें। मैं आपको हमेशा बता सकता हूँ वो किसके साथ रहा है। यकीनन देखें, वो माहौल, वो रूह उसे पकड़ लेती है। आप एक गिरजाघर में जाते हैं जहाँ सब लोग, आप पवित्र आत्मा वाले गिरजाघरों में जाते हैं या पेंटिकोस्टल गिरजाघरों में जाते हैं, वो इसे यही कहते हैं, सब कुछ छोड़ दें। हो, वो भागते हैं और अपने सर को आगे पीछे करते हैं जैसे पास्टर करता है। पूरा चर्च वैसे ही करना शुरू कर देता है। मर्दों को, लोगों को उठने दें और बस कोई बुरा काम या कुछ और करने दें, फिर सब वही काम शुरू कर देते हैं। किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां पास्टर रुखा और ठंडा हो, पूरा ग्रुप भी वैसा ही नजर आता है। आप उस माहौल में आ जाते हैं। आप एक अच्छे इखलाक वाले आदमी को लें और उसकी एक आम औरत से शादी कर दें जिसकी कदर 1 टके की भी नहीं है। देखें, ज्यादा देर नहीं लगेगी कि उस आदमी की कदर भी 1 टके की नहीं रहेगी। अखियब के साथ ऐसा ही हुआ था। इसी तरह इसके बरक्स देखें, एक अच्छी औरत की एक बड़े आदमी से शादी कर दें जिसकी कदर 1 टके की नहीं है। पहली चीज आप जानते हैं, वो वही काम करेगी जो वो कर रहा होता है। मैं आज सुबह जाकर छोटे छोटे टूटे हुए घरों की और बाकी चीजों की निशानदेही कर सकता हूँ, जहाँ मोहब्बत करने वाली माएं एक शराब पीने वाले वालिद का सामना करती हैं और वगैरह वगैरह, और सोचती थी वो उसे ठीक कर सकती हैं, और अब माँ और बाकी सब भी पी रहे हैं और काम जारी है। ये माहौल है, ये क्या है, ये शैतान है, ये शैतान का हमला है। وہ دارتے شیر کی طرح اس قوم میں گھس گیا ہے. اس نے اپنے آپ کو یہاں سب سے اچھی جگہ ہالی ووڈ میں بسا لیا ہے. اس نے کہا جب تک ٹیلی ویژن نہیں آتا میں یہاں فلمیں بنا سکتا ہوں, پھر میں انہیں قابو کر لوں گا. اور وہ وہاں بیٹھ گیا. اور چرچ کے لوگ اپنے بچوں کے شوز بند کرنے اور وہاں جانے سے روکنے کی بجائے اتوار کی دوپہر انہیں 10 سینٹ دیتے ہیں اور انہیں وہاں بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ تھوڑی سماجی تاش پارٹی کر سکیں, خود باہر جا سکیں اور خود گھوم پھر سکیں. ہو کتنی شرم کی بات ہے. اب وہ صرف ٹیلی ویژن کو آن کرتے ہیں اور اس پر دنیا میں موجود تمام گندگی, بےہودگی اور بکواس کو دیکھتے ہیں. یہ ٹھیک بات ہے. میں مووی کے خلاف نہیں ہوں, میں ٹیلی ویژن کے خلاف نہیں ہوں, بےہودہ چیزوں کے خلاف ہوں جو اس پر آتی ہیں. یہ وہی ہے جو یہ ہے. اگر آپ اسے اخلاقی بنائے رکھتے تو یہ اخلاقی رہتا. آپ یہاں شہر میں پرانی طرز کے بٹن والے جوتے آج بالکل بھی فروخت نہیں کر سکتے ہیں. خواتین انہیں پسند نہیں کرتی ہیں, وہ جوتوں میں سے پاؤں کی انگلیاں باہر نکالنا چاہتی ہیں اور خواتین یہ کر رہی ہیں. یہ ٹھیک بات ہے. جب آپ گرجا گھر جاتے ہیں تو آپ انہیں پرانی طرز کا مذہب نہیں بیچ سکتے ہیں, کیونکہ ہر دوسری عورت اس سے کچھ لینا دینا نہیں چاہتی ہے. نہیں جناب, مجھے گہرے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, میں بس ایمان رکھتی ہوں, اتنا ہی کافی ہے. او بھائی, شیطان بھی ایمان رکھتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو توبہ کرنی پڑے گی ورنہ آپ ہلاک ہو جائیں گے. اب معذرت خواہ ہوں. نہیں میں نہیں ہوں, نہیں میں نہیں ہوں, نہیں میں اسے واپس لیتا ہوں. میں لوگوں سے پیار کرتا ہوں, بلکہ میں آپ سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ آپ کو اس طرح سر کے بل گوتہ لگاتے دیکھنا چاہتا ہوں. اگر خداوند نے چاہا تو میں اسے تھوڑی دیر بعد اسی ہفتے لوں گا. اب آپ ماؤں کے لیے جو مائیں ہیں, جانے سے پہلے آپ کے لیے بس کچھ الفاظ ہیں. خدا آپ کو برکت دے. آپ اپنے بچوں کی ٹھیک پرورش کریں. ہم اس حملے کو دیکھیں گے. ہم نے ابھی گھروں میں اور بہت سی جگہوں میں, سکولوں میں اور باقی جگہوں میں اس کے ساتھ جانا ہے. ہم اسے دیکھیں گے. لیکن ریاست ہائے متحدہ پر حملہ کر کے شیطان نے اس پر قبضہ کر لیا ہے. روس سے مت ڈریں. روس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے. یہ ہم خود کر رہے ہیں. ہماری اپنی بوسیدگی ہمارے درمیان موجود ہے. یہ ٹھیک بات ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ ریاست ہائے متحدہ میں پوری دنیا سے زیادہ طلاق کے کیسز ہیں, زیادہ طلاقیں ہوتی ہیں. اس کے بارے میں سوچیں, یہ خوفناک بات ہے. مامتا ٹوٹ چکی ہے. مائیں اب اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں نہیں رہتی ہیں جیسے وہ رہا کرتی تھیں. انہیں کام کی ضرورت ہے. یہاں ایک دن اس شہر میں ایک کریانے کی دکان والا آدمی اس بارے میں مجھ سے بات کر رہا تھا. یہ نوجوان شادی شدہ خواتین جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ عوامی کارخانوں میں کام کرتی ہیں. وہ عوامی مقامات پر کام کرنے کے دوران اپنے بچوں کے لیے بیبی سیٹرز رکھتی ہیں. کہا جب وہ عوامی کاموں سے فارغ ہو گئیں تو ان میں سے دو وہاں کھڑی ہوئی تھیں. کہا فکر نہ کریں, ہم کسی نہ کسی طرح پیسہ کما لیں گی. ہو جسم فروشی کی گھڑی قریب ہے. یقیناً شیطان نے انہیں بتا دیا ہے کہ وہ گھر کی سربراہ ہے. وہ اپنا پیسہ خود کما لیں گی. وہ وہی کریں گی جو چاہیں گی. اور اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ یہ بات ان میں سے نکال لیں. ان میں سے صرف ایک ہی چیز یہ نکال سکتی ہے اور وہ قربان گاہ ہے, جو کہ یسوع مسیح کے سامنے ایک پرانی طرز کا آنسو بہانے والا دین ہے, جو ان کے دلوں کو توڑ دے اور انہیں توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور انہیں وہی بتائے جو انہیں ہونا چاہیے. یہ ٹھیک بات ہے. ہو سکتا ہے وہ سوچیں میں پرانے زمانے کا انسان ہوں, لیکن جس دن آپ مر رہے ہوں گے میرے بہن بھائیوں, آپ کو احساس ہوگا کہ میں نے آپ کو سچ بتایا تھا. یہ ٹھیک بات ہے. وہ نشانے پر ہے. وقت قریب ہے. اب دیکھیں, جی ہاں, یہ فیصلے کی گھڑی ہے. فیصلے کی گھڑی ہے. گرجا گھر میں آنے کے لیے نہیں بلکہ فیصلے کی گھڑی ہے کہ آیا آپ مسیح کی خدمت کرنے جا رہے ہیں یا اپنے گرجا گھر میں نیم گرم بن کر رہنے جا رہے ہیں. اور یہ درست ہے. چرچ کے ممبران کی کافی تعداد ہے. اگر تمام یا امریکہ کے لوگ جو خود کو مسیحی کہتے ہیں دوبارہ پیدا شدہ مسیحی یعنی حقیقی مسیحی بن جائیں, بھائی, تاکہ ہم جنگوں اور پریشانیوں سے اتنے ہی محفوظ ہو جائیں جتنے آپ آسمان پر محفوظ رہیں گے. جی ہاں جناب, بیماریاں اور باقی چیزیں زمین کو چھوڑ دیں گی. کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ سڑک پر ایک عورت کو آتے ہوئے دیکھ کر ایک آدمی کہے, بہن آپ کیسی ہیں, صبح خیر بھائی, اور آگے چلے جائیں. وہاں نہیں, آپ کو دنیا کی کوئی فکر نہ ہو, سب کچھ بالکل ٹھیک اور اچھا ہو. اور آدمی گلی کے کونے پر پہنچ کر آپ کو کچلنے کی کوشش کرنے کی بجائے وہ رک جائے اور کہے, بھائی آپ ٹھیک ہیں, ٹھیک ہیں, आपके पास हो, आप मेरे सामने आ गए थे। आप देखें, ये ठीक बात है। क्या ये शानदार नहीं होगा? हम इसे हासिल करने जा रहे हैं। वो दिन आने वाला है, लेकिन भाई ये हजार साल बादशाही में होगा। ये ठीक बात है, बस अब हम नहीं हैं। एक दिन यहाँ मैं अपने पड़ोस में खड़ा हुआ था। हमारे पड़ोसी के खिलाफ कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अपने छोटे बच्चों पर गौर कर रहा था। बीवी रो रही थी, इस इलाके का एक फलां डॉक्टर है, उसकी छोटी लड़की मेरी छोटी बेटी के साथ इधर उधर घूमती रहती थी और वो एक दूसरे से प्यार करती थी। जब उन्हें ये पता चला कि उसका नाम ब्रहनम है और वो रेवरेंड ब्रहनम की बेटी है, तो दोस्ती खत्म हो गई। वो छोटी लड़की अब मेरी छोटी बेटी के साथ नहीं जा सकती थी। मेरे खुदाया, मैंने सोचा खैर ठीक है। कुछ पड़ोसी वहाँ गए, कहा भाई सब कुछ ठीक चल रहा था और वो अपने पादरी के पास गए थे। मुझे मत बताएं, आप जानते हैं मेरे पास बहुत सी चीजों को जानने का एक तरीका है, आपको मालूम है। लिहाजा वो अपने पास्टर के पास गए और कहा, आप जानते हैं हमारे पड़ोस में एक आदमी रहता है, वो हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। कहा वो रेवरेंड ब्रहनम है, वो उन्हें लेता है और अपने छोटे पुराने ट्रक में बिठाकर बाहर ले जाता है। कहा खैर हमारे पास रेवरेंड ब्रहनम के खिलाफ कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप देखें वो हमसे मुख्तलिफ तबके के लोग हैं। जी हाँ, मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ना हों। आप जानते हैं मैं इस तरह का नहीं हूँ। आप उनसे बात करें और दोस्ताना माहौल में रहें, लेकिन बस इतना ही काफी है। हो बाय। मेरी बीवी वहाँ खड़ी रो रही थी। मैंने कहा प्यारी, ये अलग करने वाली लकीर है। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम खुदावंद की खिदमत करेंगे। अब सारी दुनिया हमें छोड़ दे, यीशु मसीह फिर भी साथ है। चाहे मुझे एक जनूनी कहा जाए, चाहे मुझे अपने रिश्तेदारों से, अपने साथियों से और बाकी सबसे दूर होना पड़े, मैं फिर भी यीशु मसीह का इंतखाब करूंगा। खुदा का ना बदलने वाला हाथ थामे रखें। जब जमीनी दोस्त आपको छोड़ दे, तो फिर मजीद उसके करीब होकर उससे लिपट जाएं, उससे थाम ले। खुदाया मुझे ऐसी मुनादी करने दे जैसी मैंने पहले कभी नहीं की। मुझे मरते हुए आदमियों के लिए इस तरह मुनादी करने दे जैसे मैं खुद मर रहा हूँ। मुझे लोगों में ऐसे मुनादी करने दे जैसे मेरे पास मुनादी के लिए कोई और पैगाम का मौका नहीं है। मैं उन्हें कुर्बान गाह पर आने के लिए ऐसा तैयार करूँ कि आंसू उनके चेहरों पर बह रहे हों, ताकि घर वापस जाकर अपने पड़ोसियों के साथ मसीही लोगों की तरह जिंदगी बसर करें। इधर उधर भागना और कूदना और ऐसे काम करना बंद कर दें, और इस तरह का अमल करना और गुस्सा करना और इस तरह चलना रोक दें। ओ ऐसा मत करें, यही वो शैतान है। यही शैतानी रूहें मसीहों पर आ जाती हैं। याद रखें, जो खादम पहले आए वो उनके लिए अंबिया थे, वो नबी थे, वो कुर्बानी चढ़ाने वाले मजहबी आदमी थे, वो इस जमाने के असातिज़ा की तरह मजहबी थे, लेकिन भाई वो सच्चाई को जानने से बहुत दूर थे। क्या आपने गौर नहीं किया शैतान कितना मजहबी है? शैतान कोई बड़ी मुखालफ ताकत नहीं है, जैसा कि कम्युनिज्म है जो मसीहत की मुखालफत करता है। ये नहीं है, ये हो ठीक है, यकीनन ये शैतान का है, लेकिन ये मुखालफ मसीह नहीं है। मुखालफ मसीह बहुत मजहबी है, बहुत मजहबी है। ये एक मजहबी रूह थी जिसने यीशु को मसलूब किया था। ये हमेशा से एक मजहबी दुनिया रही है, मजहबी लोग रहे हैं जो मसलूब करते हैं। ये मजहबी लोग थे जो हकीकी मसीह के खिलाफ थे। ये मजहबी अंबिया थे जो मिकाया के खिलाफ थे। ये इस वक्त के मजहबी लोग हैं जो खुदा के पैगाम के खिलाफ हैं। याद रखें, मैंने आपको खबरदार कर दिया है, मैंने आपको बता दिया है, मैं कैथोलिकिज्म और बैप्टिस्ट और मेथोडिस्ट के बारे में इतना ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो पाकीज़ा लोग हैं, ठीक यहाँ इन कतारों में हैं। आज इसे देखें, ये कैसे ड्रामे में खड़ा हुआ है। ओ मेरे खुदाया, मैं इसे किसी दिन जान लूंगा, और ये सोचकर मेरा दिल टूट जाता है। एक पुराने बैंजो के साथ वहाँ खड़े हो जाएं, उस पुराने बैंजो को बजाएं और इस तरह की एक पुरानी सरंगी को बजाएं। क्या ये टेक्सास का फला फला चरवाहा है? मुझे उस आदमी के खिलाफ कुछ नहीं कहना, लेकिन वो आदमी दुनियादारी से बाहर है। ये ठीक बात है भाई, बल्कि मैं इसके साथ खड़ा होना चाहूँगा, किसी और चीज के साथ नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन इसके साथ खड़े होकर अपने हाथ उठाऊंगा और कहूँगा यीशु मुझे सलीब के करीब रखें। जी हाँ जनाब, मैं मुकद्दस सलीब को उठाऊंगा जब तक मौत मुझे आजाद ना कर दे। फिर घर जाकर एक ताज पहनूंगा, क्योंकि वहाँ मेरे लिए एक ताज है। आज सुबह यहाँ आप माओ के लिए, आप जो हकीकी माएँ हैं, और मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारी ऐसी हैं। मेरा ख्याल है, मैं आपको कुछ बताऊं, मेरे ख्याल के मुताबिक आप सब पांचवी अंजील हैं। खुदा आपको बरकत दे। मैं आपको बताता हूँ कि अब आपके बच्चों के लिए क्या है। बस एक छोटी सी बात है, क्योंकि भाई नेविल गालबन आज रात माँ के बारे में इस पर मुनादी करेंगे, या हम में से कोई भी मुनाद माँ के बारे में बात करेगा, ठीक है। लेकिन सुने, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। याद रखें, जब मूसा एक छोटा लड़का था तो ये एक माँ थी जिसने उसे तालीम दी थी। ये एक खुदा प्रस्त माँ थी जिसने नन्हे मूसा को अपने घुटनों पर बिठाया था और मूसा को सब कुछ सिखाया था। वो उसका उस्ताद था, बल्कि वो उसकी उस्ताद थी, मेरा मतलब है फराउन के मोहताज थी, और कहा अब ये बातें सुन। कहा मूसा, किसी दिन तुम बनी इसराइल को मखलसी देने जा रहे हो। तुम वो लड़के हो जिसे बुलाया गया है। अपने आप को दुनिया से पाक और बेदाग रखना, क्योंकि तुम ही वो एक हो। तुम ही वो एक हो। हमें किसी ऐसी जगह का इल्म नहीं जहां वो कभी किसी सेमिनरी में सीखने के लिए गया हो। जो उसने सीखा था वो फराउन के महल में रहता था, जो कि एक बुत प्रस्त था, लेकिन उसकी माँ ने उसे सिखाया था। एक हकीकी माँ ऐसी ही होती है। उसने उसे खुदावंत के हकाम सिखाए। उसने उसे बताया कि उसे कैसा मुकद्दस होना चाहिए। उसने उसे बताया कि उसे किस तरह और कैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए, और खुदा उसके लिए जो करना चाहता है वो जरूर करेगा। और वो मूसा के साथ उसकी जिंदगी के तमाम अयाम तक जुड़ी रही। और कोई भी अच्छी सच्ची वफादार माँ अपने छोटे बच्चों को इसी तरह पालेगी, बजाय इसके कि उन्हें फिल्में और नाच रंग देखने के लिए भेजे और वगैरह वगैरह, बल्कि वो उन्हें अपनी गोद में बिठाकर खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सिखाएगी। यहाँ किसी दिन मैं टेलीफोन पर एक माँ से बात कर रहा था, और माँ ने कहा ओ भाई बिली, उसने कहा मेरा बेचारा लड़का मुसीबत में है। कहा ओ वो कितनी बड़ी मुसीबत में है। मैंने कहा हाँ अजीज बहन, मैं उसके मुतालिक जानता हूँ। और उसने कहा हो सकता है वो गलत हो, मैं नहीं जानती। कहा कोई ये कहता है और कोई वो कहता है, मैं नहीं जानती, लेकिन कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गलत है या सही है, मैं उससे प्यार करती हूँ। आप यहाँ हैं, मैं उससे प्यार करती हूँ। उसने अपनी माँ से कहा मुझे इस और उसने बहुत धोखा दिया है। कहा माँ, मुझे यकीन है आप ही एक प्यारी खातून हैं जो मेरे साथ सच्ची हैं और मेरे साथ जुड़ी हुई है। ये माँ की मोहब्बत है। ये एक हकीकी माँ है जो अपने बच्चे के गिर्द अपनी बाहें फैलाए रखेगी, इससे कता नजर कि वो सही है या गलत है, वो फिर भी सही तरीके से आगे बढ़ती है। और अगर खुदा, अगर एक माँ अपने बच्चे के बारे में ये सोच सकती है, तो खुदा अपने बच्चे के बारे में कितना ज्यादा सोचेगा। आप समझ गए। आप उसके साथ ठीक बने रहें, दुरुस्तगी से चलें। और अब मैं जल्दी से बाइबल में से आपको एक और माँ के बारे में बताता हूँ। इससे पहले हम खत्म करें, एक माँ थी जिसका नाम हेरोदियास था। उसने अपनी बेटी को एक खास डांस सिखाया था। वो चाहती थी वो मकबूल हो जाए, और उसने बादशाह के सामने डांस किया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर मांग लिया। हमारे पास उसकी 70 नस्लों का रिकॉर्ड मौजूद है। वो लड़की हेरोदियास की बेटी डांसर थी, और हेरोदियास के सामने उसने डांस किया था। देखें, उसकी 70 नस्लें या तो वो फांसी से मरी या फिर तवाइफें बनकर मरी। एक माँ ने उन्हें दुनिया की बातें सिखाई, और दूसरी माँ ने उन्हें खुदा की बातें सिखाई। एक अजीम रहनुमा और फातह बन गई और आज तक लोगों के दरमियान अमर है, और दूसरी बदकार बन गई और जहन्नुम में है और लाखों लोगों को अपने साथ ले गई है। क्या मेरा मतलब समझ गए हैं? बच्चे की परवरिश उसी राह पर करें जिस पर उसे जाना चाहिए। और मुझे यकीनी तौर पर आपके साथ हमदर्दी है, गरीब माओं के साथ जो अपने सफेद गुलाबों के साथ यहाँ बैठी हुई है। एक माँ आज आसमान पर चली गई है, पुरानी तर्ज की एक अच्छी माँ जो खुदा के लिए जीती थी, गालबन पर्दे के पार चली गई है। वो आपके आने का इंतजार कर रही है। ये ठीक बात है। आप जो सुर्ख गुलाबों के साथ बैठे हुए हैं, मैं आपकी इज्जत और एहतराम करता हूँ। अपनी माँ के लिए, अगर आप अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो साल के 365 दिन करें, उसके घर जाएं और दुआ करें और खुदा के लिए जिएं। ये काम करने की जरूरत है, और अपने बच्चों की परवरिश करें। और जब आपके बच्चे जवान हो जाएंगे और आप पर्दे के पार चली जाएंगी, तो वो आपको मुबारक कहेंगे। ये मदर्स डे की असल रूह है, ये ममता की असल रूह है। मदर्स डे साल के 365 दिन होता है। ये तो वो दिन है जब दुनिया फूल बेचती है और तोहफे देती है। अगर दुनिया मजीद 20 साल तक इसी तरह चलती रही और ये होता रहा, तो इनके पास बेटे का दिन, बेटी का दिन, कजन का दिन और चचा का दिन और इस तरह के कई दिन होंगे। और दुनिया की तजारती चमक दमक हासिल करने के लिए ये काफी है। बस यही है जहाँ ये जा रही है, तबाही की तरफ जितनी तेजी से ये जा सकती है, सीधा जहन्नुम में जा रही है। लेकिन आपके लिए मेरी दुआ है, खुदा आपको बरकत दे। آئے ہم دعا کریں۔ ہمارے مہربان آسمانی باپ، جیسا کہ ہم آج صبح اپنے ذہنوں کے ساتھ ماضی میں دیکھتے ہیں، تو کچھ سو سال پہلے وہاں پر یہوشوت بادشاہ اخیب کے پہلو میں کھڑا ہوا تھا، اور اس کے دل میں ابھی تک ایک چھوٹی سی روح خدا کی طرف سے موجود تھی۔ حالانکہ اس نے غلطی کی تھی، اس نے بتایا تھا، کہا تھا، یہ غلط ہے، یہ صاف نہیں ہے، یہ مقدس نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا تھا کہ یہ باتیں اس طرح نہیں ہو سکتی ہیں، اور خدا کی چھوٹی سی آگ نے اسے جگا دیا۔ اور پھر آپ کے پاس اس چھوٹی سی آگ کا جواب دینے کے لیے کوئی آ گیا، اور وہ خدا کا سچا نبی مکایا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ہو کر وہاں آیا ہو، ہو سکتا ہے وہ حقیر بن کر وہاں آیا ہو، اور وہ سب اس کی طرف ایسے دیکھ رہے ہوں جیسے بیڑیوں کا ایک جھنڈ کسی بڑے کو دیکھ رہا ہو۔ اس کے منہ پر تھپڑ مارا گیا، لیکن تو بھی اس نے سچ بتایا۔ حالانکہ اسے جیل میں جانا پڑا اور اسے غم کا روٹی اور پانی کھانا پڑا، لیکن پھر بھی اس کا فرمایا ہوا کلام پورا ہوا، کیونکہ آپ اس کے ساتھ تھے۔ اے خدا، آج یہ عطا کر دے، اور ہم اس بائبل میں دیکھتے ہیں، ہم چرچ کی کتابوں اور ڈیکالوگز اور وغیرہ وغیرہ کو اور گرجا گھروں کی رسومات کو دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں وہ یہ وہ یا باقی کام کیسے کرتے ہیں، لیکن آئیں یہاں اس سچے کلام کو دیکھیں اور دیکھیں کہ یہ کیا کہتا ہے۔ پاکیزگی کے بغیر کوئی آدمی خداوند کو نہیں دیکھے گا۔ امن اور پاکیزگی کی پیروی کریں، جس کے بغیر کوئی آدمی خداوند کو نہیں دیکھے گا۔ وہ جو دنیا سے یا دنیا کی چیزوں سے محبت رکھتا ہے، اس میں خدا کی محبت نہیں ہے۔ آخری دنوں میں برے دن آئیں گے، آدمی خود غرض، مغرور، گمنڈ کرنے والے ہوں گے۔ او یہ بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں خداوند، یہ ہو رہے ہیں۔ ڈیڑھ گمنڈی خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہیں۔ لوگوں کو خدا کے حکام سکھانے کی بجائے انسانوں کے حکام سکھاتے ہیں۔ دین داری کی وجہ تو رکھتے ہیں، لیکن روح القدس کی قدرت کا انکار کرتے ہیں، تاکہ آدمی کو روح سے معمور ہونے پر لگائیں، اسے خوشی حاصل کرنے پر لگائیں، تاکہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں، تاکہ وہ باہر جا کر بیماروں کے لیے دعا کرے، تاکہ وہ غیر زبانوں میں بات کرے اور اس کا ترجمہ کرے اور وہ نبوت کرے۔ زندہ خدا کو یا خدا کی روح کو انہوں نے بس کسی لاج میں یا کسی اور چیز میں بند کر دیا ہے۔ دینداری کی وجہ تو رکھتے ہیں، لیکن اس کی قدرت کا انکار کرتے ہیں۔ اے خدا، ہونے دے یہ تھوڑے سے سامین آج کے دن ابھی جلدی سے جاگ جائیں، اس سے پہلے آخری وقت آ جائے اور ہمیں اس حال میں پائے۔ ہونے دے ہم خود کو نئے سرے سے تیار کریں، جیسا بائبل نے فرمایا ہے، اٹھو اور اپنے آپ کو ہلاؤ اور پرانا راستہ اپناؤ جو کہ اچھا راستہ ہے، اور جب وہ تمہیں مل جائے تو اس پر چلو۔ اے خدا، یہ عطا کر دے تاکہ ہم پرانے کٹھن راستے کو تلاش کر سکیں، اور ہم ایک ساتھ سینکڑوں میں کھڑے ہو سکیں اور ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر گائیں۔ میں خداوند کے چند حقیر لوگوں کے ساتھ راستہ اختیار کروں گا۔ میں نے یسوع کے ساتھ شروعات کی ہے اور میں اس کے ساتھ چل رہا ہوں۔ اے خدا، ہماری اس طرح رہنے کے لیے اور ایسا بننے کے لیے مدد کر۔ خداوند ان تمام پیاری ماؤں کو جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں برکت دے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ آج صبح جو اپنے لباس پر سفید گلاب لگائے ہوئے ہیں، یہ ان ماؤں کے لیے ہیں، یہ پیاری بوڑھی ماؤں کی یادگاری میں لگائے گئے ہیں جو اس جہان سے جا چکی ہیں۔ اے زندگی کے مالک خداوند، انہیں برکت دے اور ہونے دے یہ برکت پائیں، اور ان کی یادیں بچوں کے ساتھ ایسی ہوں جیسے ان کی ماں ان کے ساتھ ہے، جبکہ وہ پردے کے پار ایک جلالی آسمان پر چلی گئی ہے۔ خداوند یہ بخش دے، اور کسی صبح جب زندگی ہماری رگوں سے ختم ہو رہی ہو اور ہماری سانسیں مشکل سے آ رہی ہوں، تو وہ پردہ واپس کھل جائے گا، اور ہو سکتا ہے وہ ہماری مدد کرنے کے لیے یردن کے اس کنارے پر نیچے آ جائے۔ ہو اس جلالی دن میں جب ہم اس پار قدم رکھیں گے، وہاں یہ چیزیں نہیں ہوں گی، ہوا سگریٹ کے دھوئیں سے آلودہ نہیں ہوگی، وہاں سڑک پر کبھی کوئی شرابی نہیں پڑا ہوگا، وہاں کبھی فاشا نہیں ہوگی، وہاں کبھی گناہ نہیں ہوگا، وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ جلال میں ہمیشہ کے لیے ہم امن سے اپنے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ رہیں گے۔ اور ہو یہ کتنا شاندار دن ہے۔ اے باپ، جبکہ بڑا اندھیرا چھایا ہوا ہے اور شیطان جنگوں کے ذریعے ملکوں پر حملہ کر رہا ہے اور ممبروں پر حملہ کر رہا ہے، گرجا گھروں پر حملہ کر رہا ہے، لوگوں پر حملہ کر رہا ہے، کاروبار پر حملہ کر رہا ہے، شہروں پر حملہ کر رہا ہے، اور سکولوں اور گھروں پر حملہ کر رہا ہے، اے خدا، کھڑے ہونے میں ہماری مدد کر، تاکہ جلدی سے تلوار کھینچیں اور خدا کے لیے لڑیں، جیسے موسیٰ اور لاویوں نے وہاں کیا تھا جب گناہ چھونی میں آ گیا تھا۔ خداوند، ہماری مدد کر خداوند، اب ہمیں معاف کر دے اور ہمیں برکت دے، ہمیں عاجز بنا اور ہمیں توڑ دے۔ اے خدا، تو نے کہا جو روتا ہوا بیج بونے جاتا ہے وہ اپنے پولے لیے ہوئے شادمان لوٹے گا۔ اے خدا، ہمیں توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اے خداوند، ہمیں نئے سرے سے بنا دے، ہم راستے سے بہت زیادہ ہٹ گئے ہیں۔ اے خداوند، میں خود ایک ایسی جگہ پہنچ گیا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ میری عبادت میں کتنے لوگ حاضر ہوں گے۔ اے خدا، میں چاہتا ہوں کہ آپ حاضر ہوں۔ خداوند آ، اے مسیح خداوند آ، مجھے توڑ دے اور مجھے ڈال۔ اے خداوند، میں ان باتوں کو کبھی اپنے ذہن میں نہ آنے دوں۔ اے خدا، ان باتوں کو مجھ سے دور رکھ۔ خداوند، منادی کرنے میں میری مدد کر، جیسا کہ میں نے کچھ دیر پہلے کہا تھا، جیسے ایک مرتا ہوا آدمی مرتے ہوئے آدمیوں کے لیے کرتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ ہم سب کو ابدیت کا سامنا کرنا ہے، ہمیں تیرے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس وقت تو اپنے خوش نما انداز میں نہیں ہوگا، تو رحم کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ تو رحم کے بغیر کھڑا ہوگا۔ تو قہر میں کھڑا ہوگا ان قوموں کا فیصلہ کرنے کے لیے جن لوگوں نے تیرے بیٹے کی محبت کو رد کر دیا اور ٹھکرا دیا تھا۔ اے خدا، مجھے آج اپنی رحمت عطا کر دے، تاکہ اس دن میں اطمینان سے کھڑا رہ سکوں۔ ہو سکتا ہے اب رونا پڑے، لیکن تو خوشی کے ذریعے آنسوؤں کو مٹا دے گا۔ اس وقت جب تو کہے گا، خداوند کی شادمانی میں شامل ہو جاؤ جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی تھی۔ اے خدا، اب ہمارے ساتھ رہنا اور ہماری مدد کرنا۔ ہم یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔